तो आशीर्वाद सूचक है। श्रीमद् भागवते महामणि कृते किंवा परेश्वरे धर्म प्रोजित कैतवत्र, ये वस्तु निर्देश के श्लोक है। और निगम कल्प तरुर गलितम फलम फल रस पिलाए, ये आशीर्वाद है। सब पियो, फ्रूट जूस सबको पसंद लगता है इसलिए, और फ्रूट जूस सभी पी सकते हैं दो झोर मैच्योर्ड, क्योंकि बच्चे फल रस नहीं पी सकता, पेट खराब हो जाएगा, है ना। बच्चा जब छोटा रहता है तो दूध पीता है, फ्रूट जूस थोड़ी पीता। फ्रूट जूस तो आप लोग पियेंगे जो मैच्योर्ड है, बच्चे को दूध दिया जाता है। तो इसलिए भागवत महापुराण को फ्रूट जूस कहा गया, फल का जूस, और भगवत गीता को दूध कहा गया। भगवत गीता दूध है, सबसे पहले उसको पीना चाहिए बिगिनिंग में। दूध पी करके अब ठीक ठाक हो गए, अभी आप लोग यंग हो गए, अभी आप दूध, अभी फ्रूट जूस पी सकते हैं, भागवत पी सकते हैं। तो ये केवल भूवि भावु का रसिका, जो सब आप जैसे महान भक्त हैं उन लोगों के लिए भागवत है। तो तीन श्लोक को कहने के बाद मंगलाचरण के जो विषय वस्तु को शुरुआत करते हैं, श्री व्यास जी ने चतुर्थ श्लोक में भी नैमिषारण्य का नाम लिए, है ना, नहीं फोर्थ ना, नैमिष नैमिष क्षेत्रे, ये चौथा श्लोक मेरे ख्याल में है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो भागवत की शुरुआत ही कहो, क्योंकि तीन तो मंगलाचरण था, है ना, नहीं तो जहां उन्होंने शुरू किया भागवत का कथा, तो सबसे प्रथम नैमिषारण्य का नाम लिया, है ना, चौथा श्लोक आप देखा नहीं क्या? अच्छा, मैं सोचा जब निकाल कर आपसे देख रहे हैं सर। अच्छा, अरे मेरा अनुमान चौथा श्लोक ही है। हाँ, प्रभु जी भी बताते हैं निमिष निमिष क्षेत्र। तो इसलिए जितने हम लोग भागवती पंथा कहे, हम सभी को पता है कि भागवत के शुरुआत इस क्षेत्र से हुआ था। और निमिष निमिष क्षेत्र ऋषय सोन का आदय, वास्तव में कहते हैं कि निमिष क्षेत्र में भागवत श्रवण कर इकट्ठा हुए थे कौन? कोई अर्डिनरी नहीं, आप जैसे ऋषि मुनि सब, है ना, नहीं हाँ। ऋषय सोन का आदय, आप लोग रुक्मिणी कृष्ण आदय आदि, वो लीडर का नाम लिया गया। 88,000 ऋषि मुनि थे, उसमें से उनके टीम लीडर थे सोनक ऋषि, इसलिए वो सभी का नाम तो लिया नहीं जा सकता, तो उन्हीं का नाम लेकर के बाकी टीम का बताया गया। जितने ऋषय है, जितने सब पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, उनके छत्र छाया में निमिष क्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं, पहुंचे। तो आप लोग का भी पूरा यात्रा का अंतिम पड़ाव ऐसी क्षेत्र में रखे हैं, है ना, शुरू के चित्र विचित्र कूट क्षेत्र से और अंतिम भागवत स्थली में पूरा करते हैं। तो सोनक आदि, सोनक भार्गव कहा गया, भृगवंशी बड़े पहुंचे हुए ऋषि हैं, उन्हीं के नेतृत्व में 88,000 ओनली, कितने आप लोग संख्या आप आए तो इतने प्रॉब्लम है भाई, रहना खाना पीना क्या है, और वो केवल इतने ही आए थे। कैसे आए होंगे, बस में आए होंगे, किस बदल में आए होंगे भाई, जस्ट इमेजिन। आजकल तो इतने सुंदर रोड का और सब व्यवस्था है, इस प्रकार है, तभी हम लोग इतने व्यवस्था के सम्मुखीन होते हैं। और तभी जमाना में, कली के शुरुआत में, अभी कली शुरू ही नहीं हुआ था, अभी ये सब इतने संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए थे, तो कैसा, कोई एक भी गेस्ट हाउस था नहीं इधर, इसलिए उसका नाम अरण्य है, निमिष अरण्य, ये अरण्य में इकट्ठा हुए थे। हम लोग तो अरण्य जाते नहीं, हम पिकनिक करने जाते हैं तब भी सुपर स्टार वाला होटल ढूंढते हैं कि वहाँ जाकर पिकनिक करेंगे, लेकिन भले पिकनिक के लिए कम से कम थोड़ा जंगल में एक बार चला जाओ यार, नहीं वो भी नहीं होता। लेकिन वो लोग तो आए थे, वहाँ कथा श्रवण करने के लिए, और उनका क्लास का टाइमिंग क्या था? मैं जैसे प्रभु जी को पूछा अड़ेस टाइम, बोले 8 बजे तक है, 2 घंटा करना। तो उनका भी टाइमिंग बड़े फिक्स था, आपको पता होगा भागवत पढ़े होंगे, उनका टाइमिंग था 1000 ईयर्स ओनली, 1000 वर्ष तक उन्होंने बैठकर सुनना था, है ना? नहीं अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं तो किस प्रकार होंगे जो 1000 साल तक बैठ करके सत्र करेंगे, सुनेंगे बैठ करके, और कोई काम नहीं था। अरे भाई किचन भी एक्टिवेट करना है, आक्रमणेशन भी, और भी बाकी सब भी कार्यक्रम, बाकी कोई कार्यक्रम रखा नहीं गया था, केवल एक ही कार्यक्रम रखे थे उन लोग ने, सभी आएंगे और क्लास में बैठेंगे। ऐसे वर्णन अन्य अन्य पुराणों में प्राप्त होता है कि जब 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हो गए तो सबसे पहले तो सबसे पहले डिमांड है ना, 3 बार जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर और बीच बीच में और कुछ तो होना चाहिए। बोले जो कथा पिपासु हैं उनका ये कार्यक्रम रखे नहीं थे कि जिन साथ बनाए ले थोड़े भक्त लगेगा, उन्होंने व्यवस्था पहले से किए थे कि इसी क्षेत्र में जो बैठ करके सुनेंगे उनको भूख नहीं लग सकता, ये व्यवस्था पहले की थी उन्होंने, है ना? जैसे आप लोग बैठ कर करते हैं कि साउंड सिस्टम ठीक होना चाहिए, पंखा नहीं चलना चाहिए, ऐसा वो करते हैं व्यवस्था, तो वो लोग भी व्यवस्था किए थे कि कोई कथा में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए भूख और प्यास नहीं लगना चाहिए, ये दोनों को जैसे हिट प्रूफ, तो इसलिए वो स्थान को क्या बनाए थे ना, इस क्षेत्र को हंगर एंड थर्स्ट प्रूफ, यहाँ आने से हंगर एंड थर्स्ट लगेगा ही नहीं भैया, ठीक है खाएंगे पिएंगे नहीं है, खाएंगे पिएंगे तो फिर पेशाब 1 नंबर 2 नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसका प्रावधान भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नो इनपुट नो आउटपुट। और बोले लेकिन कलयुग आरंभ हो रहा है, लोगों का आयु तो इतने नहीं हुआ, 1000 साल कैसे बैठेंगे, कुछ तो जम लोग भी जाएंगे, है ना? नहीं वो इतने दिन तो कोई रह नहीं सकते, तो बोलते हैं कि उन्होंने जमराज को भी इन्वाइट कर लेते, जमराज को इन्वाइट किए थे, बोले भाई आप ऑफिस बंद करके आओ यहाँ बैठो कथा, तो ऑफिस बंद था तो इसलिए वो कारोबार नहीं कर सकते थे, तो किसी का मृत्यु नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद बैठे थे, उनका ऑफिस एक्टिव नहीं था। बोलेंगे हम कुछ सैकड़ों लोग आए हैं, साउंड सिस्टम में इतना गड़बड़ हो जाता है, वो 88,000 कैसे? बोले वायुदेव के अपॉइंटमेंट किए थे, वायुदेव का दायित्व दिया गया था, हम इतने सारे एम्पलीफायर का जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक करंट का जरूरत नहीं, आप ऐसे विधि कीजिए सभी के पास सटीक रूप से उनके कान में साउंड पहुंचे और बिना साउंड सिस्टम में, वायुदेव ने वो काम किए थे। सभी देवता लोग अग्निदेव आदि आए थे, अपना स्टोमा का गर्भ सेट कर रखे कि भूख प्यास ना लगे, वायुदेव को बोले श्रवण कराने, जमराज मारेंगे नहीं किसको, ये सारे व्यवस्था करके बैठे। क्या कारण था, किस लिए बैठे थे? बोलते हैं कि कलिजुग के लक्षण को देख करके, कलिजुग अभी आने वाला है, वो लोग सब पर दुखे दुखी, ये जितने ऋषि थे किस प्रकार उनका स्वभाव था, पर दुखे दुखी, इस प्रकार भीषण समय को देखकर दुखी हो रहे थे। बोले हम लोग तो ऋषि मुनि है, कहीं जाकर मैं कब, उन विचारों का क्या होगा जो भी पंजाब से आए हैं, जो क्या होगा उनका, तो इतने चिंतित थे, तो इसलिए उन्होंने कुछ व्यवस्था करना चाहते थे पूरे कलयुग के लोगों के लिए, जनता के लिए, कलयुग आने से पहले कुछ व्यवस्था करें, तो इसलिए हजारों संख्या में शक्तिशाली ऋषि मुनि ये डिसाइड किए थे कि 1000 साल का सत्र करेंगे। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए थे, जाके बताया कि बोले इसे भीषण कलयुग है, इस कारण से हम लोग के प्लानिंग किए हैं करने के लिए, हमको कोई जागा है कि बताइए, ऐसी कोई जागा जहाँ पर ऐसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और हम 1000 साल कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि ये जागा मैंने जैसे बताया हंगर प्रूफ, थर्स्ट प्रूफ, टेलेटिवरिन प्रूफ, एंड डेथ प्रूफ, ये सब साउंड प्रूफ ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार उपजुक्त जागा के जब पूछे ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने बोले ठीक है, मैं एक चक्र भेजता हूँ, आप चक्र के पीछे पीछे जाइए और चक्र का मध्य भाग उसको निमी कहते ना, एक्सिल है, साइकिल तो चलाते होंगे ना, साइकिल में कितने स्पोक होता है, सारे स्पोक कनेक्टेड टू वन एक्सिल, उसी को हब, एक्सिस न, जिससे कनेक्टेड है सारे स्पोक, हब हब एंड स्पोक, एनीवे तो इसी को संस्कृत भाषा में निमी कहा जाता है, मध्य भाग को निमी कहते हैं, जो सेंटर पॉइंट है जिसमें सारे अर जो हैं स्पोक्स कनेक्टेड हैं उसको निमी कहा जाता है भाषा में, कोई चक्र का। तो वो चक्र कैसा था, बोलते मनोमय चक्र था, ब्रह्मा जी ने चक्र बनाए, कोई मेटल से नहीं है, कैसे बनाए, मन से, मनोमय चक्र भेजे, बोले चक्र फेंक रहा हूँ मनोमय चक्र, उनके पीछे पीछे आप सब दौड़ कर जाइए, आप सबके चढ़ गए, वो सब ब्रह्मलोक से उनके पीछे पीछे करके आए, बोले जहाँ उसके निमी सेंट्रल पॉइंट भूमि को विदीर्ण करेगा, धस जाएगा, वही जगह उपयुक्त है। तो उन्होंने ब्रह्मलोक से चक्र, मनोमय चक्र फेंके, तो उसके पीछे पीछे वो लोग दौड़ते हुए आए और इसी जगह पर, इस अरण्य में उस चक्र का मध्य भाग आकर के भूमि में धस गया। चक्र बहुत विशाल घूर्णयमान चक्र आके भूमि को छेद करके चला गया, वहाँ ये कुंड हो गया, ये इसी को चक्र तीर्थ कहते हैं। तो इस जगह पर उन लोग ने फिर बोले दिस इज द प्लेस सिलेक्टेड है, इस सभी काम के लिए वही सही है। तो ऐसे कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड के यूनिवर्स के द सेंटर पॉइंट ही है, पूरी विश्व ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट है। ऐसे ब्रह्मांड में 14 लोक होता है, 14 लोक में हम जो लोक में हैं, सेंट्रल जेल में है, सेंटर पॉइंट में है, और वो सेंटर का भी ये सेंटर है, हाँ। तो वहीं से सब मैनेज किया जाता है। तो इस कंदस्थली पर मनोमय चक्र ये विशेष करके विदीर्ण किया था भूमि को। तो इसलिए यही कहा जाता है कि अगर आप लोग श्रवण करना चाहते हैं, कोई साधन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोई व्यक्ति हो उसको क्या आवश्यकता है, मन की एकाग्रता। मन ठीक नहीं तो क्लास में बैठ कर क्या खाएंगे, नथिंग पॉसिबल। तो इसलिए बोले ये सब काम करने के लिए बाकी को अरेंजमेंट आवश्यकता नहीं, तो सब बाहरी है, असली अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, मन की एकाग्रता। तो इसीलिए ब्रह्मा ने बोले बाकी तो सब बाहरी चीज है, अगर मन सही है तो बाकी ठीक ठाक कर रहा है। तो इसलिए मनमय चक्र भेजे कि मन की एकाग्रता, इस ब्रह्मांड में कौन सा एक जगह है जहाँ पर जाने से मन लग जाता है, मन की एकाग्रता होता है। तो इसे जगह सिलेक्ट की, जैसे कभी कभी आप स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने के लिए बेडरूम में जाऊँ कि बाथरूम में जाऊँ, किचन में जाऊँ, इधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, पढ़ने से डिस्टर्बेंस होता है, कहीं ऐसे स्टडी रूम करूँ मैं, ढूंढते ना अपने कोई जगह करते हैं जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, ढंग से बैठ कर पढ़ सकते हैं। तो इसे कलयुग के आरंभ से ऐसा एक जगह जिसमें इतने लोग बैठ करके विदाउट डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, तो ये है मन एकाग्रता होगा, यहाँ पर मन लगता था, इसलिए मनोमय चक्र का ये क्षेत्र है, चक्र क्षेत्र। तो वहाँ पर उन्होंने पहुँच करके 1000 साल तक सत्र आयोजन किए, यज्ञ के आयोजन किए, यज्ञ की दीक्षा लिए कलयुग के भलाई करने के लिए। तो वो बोले कि यहाँ पे कली के प्रभाव भी नहीं रहेगा, तो सारे प्रकार से व्यवस्था किए थे। तो सत्र करके कली जो मैंने बहुत पहले शुरू किए थे, जब परीक्षित महाराज थे उससे पहले भी शुरू किए थे। परीक्षित महाराज का डेथ नोटिस इशू हुआ, उन्होंने गंगा तट पर गए, सुखदेव जी ने उनको उनका भागवतम सप्ताह हो गया, तब उनका जारी था, मतलब कई सैकड़ों साल बीत गया होगा, कई सौ साल बीत जाने के बाद में भागवत में वर्णन आता है कि शौनक आदि ऋषियों ने यज्ञ कर करके बोर हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं, बोले क्या सुहा सुहा करते करते आग और धुआं में हम भी काले पड़ गए। सैकड़ों साल से, 700-800 साल से कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो होता नहीं हम लोग का, ये हम किए लेकिन सिंस दैट इज नॉट दैट इफेक्टिव। तो उसके बीच में और भी घटना हुआ था जो भागवत में वर्णन आता है दसवें स्कंद में, कि जब उन्होंने सत्र शुरू किए थे, दिन भर तो यज्ञ होता था, शाम के समय में कथा का प्रावधान रखे थे, मॉर्निंग एंड इवनिंग कथा क्लास का प्रावधान। तो क्लास सुनने के लिए भागवत में तो अभी एक एक सिटिंग में तो पता नहीं था, तो उन्हें पुराण वक्ता एक सूत गोस्वामी जिनका नाम था रोम हर्षण सुत, उनको इनवाइट किए थे। सूत माघध, जो सूत उनको कहा जाता है जो दूसरे को ग्लोरिफिकेशन करने में एक्सपर्टिस हो, वो सूत होते हैं, सूत बंदी माघध कहते हैं ना, राजा लोग सब रखते हैं। तो सूत पुराण वक्ताओं को सूत कहा जाता है। तो पुराण बोलने में एक्सपर्ट थे और व्यास जी के शिष्य थे, व्यास जी से सारे पुराण रचना तो व्यासदेव जी किए हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्या बोला था मैंने, पुराण वक्ता श्री रोम हर्षण सुत को इनवाइट किए थे, जो व्यास जी के साक्षात शिष्य थे, उनको अपॉइंटमेंट किए थे कथा के लिए, उनको बुलाए थे। तो उन्होंने दो टाइम कथा करते थे आसन में बैठ करके, आसन को व्यासपीठ कहा जाता है, व्यासदेव जी के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने सुबह शाम को कथा करते, पुराण कथा करते, नाना प्रकार के पुराण इनको आलोचना करते थे। तो एक बार ऐसे भी हुआ, जब महाभारत युद्ध के शुरुआत होने से पहले, जब युद्ध के डिसाइड हो गया कि निश्चित होगा और दोनों पक्ष के लोग अपने अपने सपोर्टर ठीक करने लगे, अस्त्र शस्त्र जुगाड़ करने लगे, सैन्य इकट्ठा करने, हमारा तरफ से कौन रहेगा, कौन सा वेपन है ना, नहीं उसी समय में अब कृष्ण बलराम के पास तो आएंगे क्योंकि उनके दोनों के साथ संपर्क है, ये तो उनके ममेरे भाई है, ममेरे भाई है ना, फुप्पेरे भाई किस पांडव, उनके क्या लगेंगे, मामा के बेटे तो होंगे और क्या, हाँ कृष्ण उनके मामा के बेटे हैं। और कुरु दुर्योधन पार्टी नहीं, कृष्ण के समधि है वो, संबंधी तो है लेकिन समधि समझते ना, समधि किसको बोलते हैं भैया, आजकल कोई करते नहीं क्या समधि, बेटी के ससुर बेटा के ससुर भी नहीं होगा, मतलब आपका बेटा बेटी और दूसरे या बेटा के बेटी के साथ अगर संबंध वैवाहिक संबंध है तो आप दोनों समधि समधणी होंगे, है ना, नहीं आजकल तो ऐसे संबंध को जो हमारे भारत हिंदू पंचांग अनुसार धर्म के अनुसार बोलते थे, बोलते नहीं है, क्या करें, तपस्या करना ही पड़ेगा। चले इतनी आवाज तो हमारा आवाज से ज्यादा हो जाता है। तो भगवत गीता में पहले अध्याय में अर्जुन ने कम से कम 10-12 संबंध का नाम लिया, स्याला ससुर संबंधिनस तथा, तो इंग्लिश में कॉमन वर्ड अंकल, होलसेल में बात, अरे इसे कैसे, अब ससुर को फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर, सब लॉ में एक कानून के हिसाब से, लेकिन मैरिज होगा कोर्ट के हिसाब से वाइफ के साथ, उसको लॉ नहीं कहेंगे, वाइफ इन लॉ कभी नहीं कहा जाएगा, यद्यपि कानूनी कागजात उन्हीं की तरफ होने के लिए होगा, साइन उनका होगा, लेकिन ही इज नॉट ट्रू वाइफ इन लॉ। एक बार व्यक्ति पूछा ये क्यों होता है, कोर्ट में तो हो जाती है, उनका कोर्ट मैरिज हुआ लेकिन उनको लॉ नहीं कहा जाता, बिकॉज सी इज लॉ, वही लॉ है, उनके चलते बाकी सब इन लॉज हुए। वो नहीं रहेगा तो कोई इन लॉस हो नहीं, सब आउट लॉस हुए। तो इसलिए लेकिन संबंधित है भगवान कृष्ण के एक बेटे जिनका नाम था, किसकी बता है, आप लोग सब कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण के एक बेटा थे, हाँ श्याम, गुड, माता जी लोग कुछ पढ़े लिखे हैं, उनको किसका साथ शादी हुआ था, हाँ किसके, दुर्योधन की बेटी, एकलौती बेटी थी, हाँ एकलौती बेटी लक्ष्मणा के साथ, बड़ी विवाह का उनका वर्णन है कि एकलौती बेटी थी और दुर्योधन राजा थे कुरुवंश के हस्तिनापुर सम्राट, उन्होंने उनके बेटी का शादी तो बहुत बढ़िया करना चाहते थे, तो स्वयंवर खूब लोगों को बुलाया था, बड़े बड़े राजकुमार सब आए थे अपने डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह ले करके कॉलिफाइड सब भाग लेने के लिए। पहले जमाने में जो विशेष राजकुमारियाँ होते थे उनके विवाह को स्वयंवर कराया जाता था, स्वयंवर शब्द का अर्थ है स्वयंवर, स्वयंवरण करना, खुद आपको इंडिपेंडेंस है, आप चुनेंगे, हमें कोई एक कंडीशन रखा जाएगा, इस कंडीशन में जो क्वालिफाई किए एक अंत चूज है। तो यहाँ पर तो कोई कंडीशन भी रखा नहीं गया था, यहाँ पर लक्ष्मणा के मैरिज सेरेमनी में स्वयंवर में कोई कंडीशन नहीं था, लक्ष्मणा के ऊपर ये इंडिपेंडेंस था कि आप माला लेकर खड़े रहिए, इतने सारे हजारों आएंगे उनमें से जो आपको पसंद है आप उनको करो। आजकल तो पसंद पहले कर लेते हैं, व्हाट्सएप में और मेल में डिसाइडेड पहले हो जाता है, तो तभी यद्यपि ये व्यवस्था था नहीं लेकिन फिर भी कहते हैं लक्ष्मणा का और उनका शंभ का कुछ टर्म्स था, तो उन्होंने शंभ गए थे, यद्यपि और कई कुमार हैं, शंभ कुमार गए थे स्वयंवर में। अब जब देखे कि इतने बड़े बड़े आए जिनको उनके पापा ने चाचा ने ताऊ ने सब चूज करते हैं और वो लोग बड़े आशा से आए हैं कि हम ही लक्ष्मणा की शादी करेंगे, तो लक्ष्मणा और शंभ की बातचीत हुआ, मैंने फोन में कुछ तो व्यवस्था होगा और नहीं होगा समथिंग बस दैट, जिससे उनके केक भाई हम तो हम चाहते हैं आपके साथ में, आप कुछ व्यवस्था करो, तो सभी के प्रेजेंस से कुमार शंभ ने लक्ष्मणा को किडनैप कर ली, उठा के ले चला सभी के होते हुए, और बाकी किसका इंटरव्यू हो सिलेक्शन हो ना कुछ हो ये सब चापानी करते होंगे उठा लिए बीच में से, और वो लोग तो कुरुवंश के जितने थे सुदृढ़ बोले ये क्या है ये जदुवंशी हमारे जात के नहीं पात के नहीं कैसे ले लेंगे, बड़े उत्त्यक्त गुस्से होकर के उठे उनको पकड़ करके मारपीट करने के लिए, और वो अकेले थे कुमार शंभ, और वो जदुवंशी पूरे अपने व्यवस्था के साथ आए और लक्ष्मणा उनके साथ दी शंभ के साथ दी, तो लड़े शंभ कुमार ने अकेले, महायोद्धा थे वो, लड़े सभी के साथ लेकिन अकेले होते हुए कैसे लड़ेंगे, बड़े बड़े महारथी थे, उनको पकड़ कर अरेस्ट करके ले गए, लक्ष्मणा के तो जैसे अपने घर में हाउस अरेस्ट किए होंगे, और उनको भी अरेस्ट करके रखे शंभ को, वो खबर जब पहुंचा द्वारका में तो जदुवंशी बोले ये क्या है हम लड़ेंगे ऐसे थोड़ी, तो हमारे लड़का को अपहरण कर ली, अरे तो क्षत्रियों में ये नियम होता है राक्षसी मैरिज भी हुआ सकता, 10 प्रकार के विवाह है एक विवाह है, बोले कृष्ण बोले मेरा शुरुआत इसी से हुआ है, मैं ओपनिंग इसी क्या मेरे बेटा तो क्या हो गया हमारा रिकॉर्ड है तो हमारा बेटा ही तो है तो हो सके दृष्टि लिखा दृष्टि नट ही लिखा क्षेत्र में हो सकता, तो कैसे नहीं हो सकता कैसे उनको अरेस्ट कर रखेंगे, तो इसलिए उस समय लड़ाई करने जा रहे तो बलराम जी के शिष्य थे दुर्योधन, ऐसे वर्णन आता है बलराम जी एक बार और भी खुश नहीं हुए चले गए थे, जब आपको पता है कृष्ण बलराम दोनों जब पहली बार पांडवों को लाख्या गृह में जला दिया गया था, मगर बांधव तो बच गए। लेकिन वो जो मीडिया रिपोर्ट आया, फटोफटो आया कि एक स्त्री और 5 जेंट्स का लाश मिला जला हुआ, तो फ्लाश आउट हो गया कि कुंती और 5 पांडव मर गए। तो उनके शुद्धि क्रिया होगा और वो उनके रिश्तेदार है कृष्ण बलराम, तो गए थे उनके शुद्धि क्रिया में भाग लेने के लिए। वहाँ मुंडन किए, नाखून काटे, त्रुट क्रिया जो होता ना 10-12 दिन का, आप लोग अभी होता ना, हम तो वो गए थे। तो वहाँ भी विदुर जी साथ मिले, विदुर जी बोले सर आप हैं ना, आप भी तो हैं, कैसे चल रहा ना चल रहा क्योंकि उनको पता था, लेकिन फिर भी रो रहे थे, है ना। परंपरा मेंटेन करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है, जहाँ से फिर रोए धोए सब कुछ कर रहे थे। तभी कृष्ण बलराम दिल्ली में थे, वहाँ द्वारका में एक्सीडेंट हो गया, अभी फ्रेश शादी हुआ था भगवान का, किसका साथ, सत्य भामा के साथ, अभी ये कोई हफ्ता भर पुराना। तो इसे घटना पांडव मर गए करके छुट्टी लेकर कृष्ण आए, तो सत्य भामा बोले बेटा करो आप अपने पिताजी के यहाँ जाओ, मैं जाकर आता हूँ फिर आप ले आऊँगे। एक ही स्टेटमेंट था, तो अपने घर में सत्यजीत के यहाँ भेज करके सत्य भामा को कृष्ण बलराम डायरेक्ट दिल्ली आ गए हस्तिनापुर। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब कृष्ण बलराम दोनों एब्सेंट है, क्योंकि सत्यभामा का मैरिज पहले से और एक दो के साथ होने का रेडी था, विशेष करके सत्यजीत का नाम क्या, सत्यधन्ना सत्यजीत का बेटा, नहीं नहीं नहीं, जो जिन्हें सत्यजीत को बद्ध किया, सत्यधन्ना, हाँ। तो उन्होंने उनके साथ पहले से सर फिक्स हुआ था कि उनके साथ शादी होगा कर, और नहीं भी कोई जो था कि सत्यभाम जैसे इनके साथ, लेकिन वो हठात ने डिसाइड किया कृष्ण के साथ शादी करने के लिए। उनके पीछे कारण है, वो समंतकमणि का जो ब्लेम लगा था, इसके कारण से जब सोचा कि ये कलंक से बचने के लिए जैसे जाम्बवान जी ने किए, मुझे भी ऐसे करना पड़ेगा, मेरा एक बेटी है और मणि और कृष्ण को दे दूँ, बेटी भी शादी दूँ, मणि जो तो डाउरी में दे दूँ, बस मैं मुक्त, वो इसे किया। अब पहले से बेटी का दूसरे के यहाँ शादी करने के लिए फिक्स हो चुका था सद्धन्ना के वहाँ, और हठात कृष्ण की शादी कर लिया सद्धन्ना, फिर वो क्या हो गया भाई, हमारे साथ में बैठा हूँ, अब मुझे बात ही नहीं किया, सीधा उनसे शादी कर लिया ध्यान करने। तो उन्होंने आकर अकुर जी अगर कोई उनसे कंसल्ट किया, सब बोले तो बहुत खराब, ठीक नहीं है, बहुत गलत बात हुआ, उसको तो सिखाना चाहिए। तो लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि कृष्ण थे बड़े प्रभावशाली, उनके सामने कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन कृष्ण बलराम एब्सेंट है, तो बोला कि कुछ करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। अकुर जी अगर और भी कुछ लोग उनको चढ़ा दिए, तो सत्यधन्ना ने आ गया, रात में आकर के सत्यजीत के घर में घुसा, सत्यजीत सो रहे थे, सत्यभामा जी उनके घर में थे, उनके पापा सो रहे थे, घुस करके नृसिंह ने आधी रात में सोते हुए सत्यजीत को गला काट दिया, मर्डर किया। हो उनके पत्नी उनके बेटी चिल्ला, लेकिन क्या करे, वो बड़ा साली था, बड़े सेनापति था, काट करके जो मणि था मणि अल्टर से निकाल लिया और उनके मार मर्डर करके मंडले के चला गया, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, डर गए थे सब स्त्रियाँ। तो जैसे जैसे क्या करके जा रहा था, सत्यभामा भी कुछ क्षत्रिय रमणी थी, तुरंत उन्होंने कार निकाला, मतलब रथ निकाला, बोला मैं जा रहा हूँ, क्योंकि तब फोन तो था नहीं कि कृष्ण को बोलेगा, बोले मैं स्वयं जाऊँगी, कृष्ण को बुला के लाऊँ, वो स्वयं चल पड़ा अकेली ऑल दी फ्रॉम द्वारका टू दिल्ली, वो चली, वो आकर के जब बताई और कृष्ण बलराम तक के ससुर साहब का डेथ हो गया, मर्डर हो गया, तो रोए और फिर बैठे हुए चले जाकर द्वारका पहुँच करके सत्यभामा बोले तुम जाओ, हम पहले देखते हैं सत्यधन्ना को बदला लेंगे। तो सत्यधन्ना को पीछा किए, पीछा करते कृष्ण बलराम दोनों दौड़ रहे थे, सत्यधन्ना मिल भी गया, वो भाग रहा था, जब पता चला कि कृष्ण आ रहे, मणि के अपूर्व जी के पास फेंका, बोले तुम संभालो मैं जा रहा हूँ आयरिश के। तो उन्हें पीछे किए, तो बलराम देखे कि बिचरा दौड़ रहा है, उनका गाड़ी पंक्चर हो गया, इंजन सीज हो गया गाड़ी का, तो पैदल में दौड़ रहा था, कृष्ण बलराम भी दौड़े पैदल में रथ से उतर के। तो बलराम जो बोले देखो पहले उसको मारना नहीं है, पहले उसको चेक करो, मणि अगर है तब तो फिर कुछ करो, मणि नहीं है तो बेचारा क्यों मार के फायदा क्या। तो लेकिन भगवान को तो गुस्सा था, उनके ससुर साहब का मर्डर है, तो सीधा जाके उसे मार डाले। बाद में तलाश लिए, मणि तो था नहीं उसके पास। तो बलराम जी के पास आकर बोले, क्या मणि मिला? हमार दिया उसने मारे, अब हमें सही सही कर रहा है, मैं आप जन्म में जा रहा हूँ, कुछ दिन घूमना कराता हूँ। तो बलराम जी ने मिथिला चले गए, उनका सर परिचित था, बोले बंधुवानों घर में जाओ, बलराम जी से चले गए वहाँ। तो वहाँ पर बलराम जी को पता लगा करके दिल्ली से वो मिथिला आ गए। मिथिला के लोग आप लोग के पास बहुत हैं, तो बलराम गए थे मिथिला टूर में। तो कृष्ण ने भी दुर्योधन भी मिथिला गए और जाकर बलराम जी को इतने प्रसन्न किए सेवा करके, तो उनसे कोचिंग क्लास लेने के लिए स्पेशल कोचिंग गदा युद्ध का स्टूडेंट बने और उनसे टीचिंग कोचिंग लिए। बलराम जी ने सिखाए थे उनको, तो इसलिए बलराम जी को खूब सम्मान करता था दुर्योधन। तो बलराम जी मानते थे ना, हमारा स्टूडेंट है, उनके साथ युद्ध करना लड़ाई झगड़ा तो रोक के कृष्ण को, बाकी से जादू वंशी बोले नहीं 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 मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मेरा बात तो काटेगा नहीं, मेरा स्टूडेंट है, अब मैं बोल देता हूँ, छोड़ देगा बताते हैं, इतना झगड़ा झाटी मार पीटने का। तो कृष्ण नारायण पाटी बोले, ठीक है भैया आप जाइए, आपका स्टूडेंट है, अगर बात मान लेगा तो भले, हम थोड़ी लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन दे दे हमारे बेटा बहू को, छोड़ दे, तो मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ अपना असिस्टेंट लेकर के बलराम जी ने गए और जा करके हस्तिनापुर के बॉर्डर में पहुँचे, दिल्ली के पास पहुँच करके खबर भेजे, जमुना किनारे या गंगा किनारे बैठे, भजे बोले जाकर बोलो कि मैं आया हूँ इस प्रस्ताव लेकर के, आज मुझे मिले बात करें, क्योंकि गुरु जी हैं वो खुद क्या जाए, इसलिए खबर भेजे, स्टूडेंट आए टीचर के पास। तो जिसको भेजे वो जाकर खबर दिया, लेकिन वो तो गुस्से मूड में थे, इसे गाली दिए, बोले कि पैर के जूता हम कुछ बोले नहीं करके सर के ऊपर चढ़ेगा, ऐसे गाली दिए जदुवंशियों को बलराम जी की हुई। उन्होंने जो गया था दूत तो आकर के आज ही ठीक बता दिया, बोला लोग तो इसी से बात करते हैं, आना तो दूर बात है, इसी से गाली बकते हैं। बलराम बोले व्हाट दिस फेलो, ऐसे बोल रहा है, हाँ ऐसे बोल रहा है। बोले ठीक है तुम बैठो, अभी मजा देखता हूँ, आपने हल निकाले, बोले पूरे हस्तिनापुर को उखाड़ करके गंगा में फेंक दूंगा। बलराम जी बहुत मूड उनका ऐसा ही है, जो खुश है तो खुश है, नहीं तो खुश है, तो सीधा पूरे दिल्ली को उखाड़ करके फेंकना चाहते थे, मेरठ है जो भी है उखाड़ के गंगा में बहा देना चाहते थे। जब उखाड़ने चालू किए तो अर्थक्वेक होने लगा, हम भाग दौड़ क्या हुआ क्या हुआ ना, ऐसे ऐसे गुस्से हैं बलराम जी ने उखाड़ के गंगा में बहा दे, अरे दागो दौड़ो दौड़ो, सब घर द्वार छोड़ करके और हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगे, एक्सक्यूज में सारा लग दिया, खूब माफ़ी मांगे, फिर बोले कि छोड़ो फिर ना करके बेटा बहू को दे, इस प्रकार किए थे। तो जब ये समय भी आया कि दुर्योधन एंड पांडव पार्टी दोनों अपने अपने सैन्य इकट्ठा करना चाहते थे, अस्त्र इकट्ठा करना चाहते थे, तो भी कृष्ण बलराम को पता चला हमारे पास भी तो आएंगे बुलाने के लिए, हम दोनों ही हमारे बंधु हैं, किसकी तरफ से हम लड़ेंगे। तो बलराम जी और कृष्ण बातचीत किए, बोले देखो कृष्ण ना, बोलिए भैया ना, देखो तो आएंगे ना, आने वाला ही है और क्या है ना, देखो दोनों अपना परिवार के है, अपने परिवार का लड़ाई में हमको भाग लेना अच्छा नहीं है, मेरा मतामत तो वही है, वो जो करें करेंगे, हमको तो उसे बीच में फंसना नहीं चाहिए ना भाई साहब, फिर करेंगे क्या, वो तो आएंगे ना भाई, उनका हम ऑप्शन रहेंगे, उनका सामना नहीं करेंगे, तो हम दोनों चले जाए ना, हम उनको भेंट नहीं करना, चले जाएंगे द्वारका को, जदुवंशियों को प्रोटेक्शन कौन देगा, हम दोनों चले जाएंगे। तो बलराम बोले भैया तुम्हारा चिंता है, तुम्हें बैठो मैं जा रहा हूँ, मैं तो फंसूंगा नहीं उसमें, अपने परिवार के युद्ध में, भाई साहब आपकी मर्जी, आप बड़े हैं आप जो। तो बलराम जी ने चले गए, बोले मैं जा रहा हूँ तीर्थ करने के लिए, तीर्थ भ्रमण में निकल गए लड़ाई से पहले, और तीर्थ में घूमते घूमते सबसे विशेष तीर्थ नैमिषारण्य में आगे पहुंचे, क्योंकि वो तीर्थराज सबसे महान तीर्थ माना जाता था नैमिषारण्य, तो इसलिए यहाँ आए। यहाँ आकर के पहुंचे तो क्लास चल रहा था, पुराण वक्ता रोमहर्षण सुत बोल रहे थे, और सोनकादी पाटी जो 88,000 बैठकर सुन रहे थे। तो बलराम जी जब पहुंचे, सारे बड़े बड़े मुनि ऋषि देखे, सब खड़े हो गए। बलराम जी आने बड़ा सब खड़े हो गए, ऑल स्टूडेंट्स दे गॉट अप। लेकिन सूत गोस्वामी ने देखे कि बलराम, लेकिन वो अपने चेयर से उठे नहीं। बलराम जी बोले, ये कौन सा है, कब से निकला है? सूत गोस्वामी ने सोचे, हमारा पुराण के नियम है जो व्यासपीठ में बैठा रहता है, व्यासपीठ में अभी सबसे सामान्य है, तो फिर वो नहीं उठेगा, बाकी लोग भले उठ सकेंगे, हम नहीं उठेंगे, हम व्यासपीठ से उठने के बाद फिर उठेंगे। लेकिन ये नियम, इट्स जनरल रूल, बलराम जनरल में थोड़ी आते हैं, हो तो स्पेशल उनको नियम लागू नहीं होगा। सख्यात बलराम है भाई, जीवाचार्य उनके लिए ये सब क्या नियम, ये मूर्खों को इतना ही पता नहीं हुआ मार। तो भगवान ने जब देखे वो नहीं उठा, तो एक कुछ ग्रास उठा करके फेंक दिए, वही मर्डर हो गया, घास मार दिए उसको। भगवान भगवान उनको मारने की घास फेंक दी, मर गया। तो सारे सनकादि ऋषि आए, वंदना तो किए, भाई भगवान है, सर्वसमर्थ है। बोले कि प्रभु, हम तो आप कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ब्राह्मण था वो, हमारे कथावाचक था, आप कुछ कीजिए। बहुत हाथ पर जुड़े रखे। तो भगवान बोले, तुम क्या चाहते हैं ना? देखिए, आपको तो कोई पाप फाप तो लगेगा नहीं प्रायश्चित करने, लेकिन फिर भी क्योंकि आप जब ही समस्त जीवों के आप अधिक अधिपति हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आगे चल करके लोग को अच्छा ऐसा काम नहीं करेंगे। बोले, बलराम नहीं कहते, हम क्यों करें? तो इसलिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए, आप थोड़ा बहुत प्रायश्चित कर्म करना उचित होगा। और हमारे लोग की कथा क्लास बंद हो गया, कुछ व्यवस्था कर देना। तो बलराम जी राजी हो गए, जितने गुस्से भी होते हैं जितने जल्दी इतने जल्दी अंदर। बोले, क्या करूं बताओ? प्रायश्चित करने के लिए राजी हो गए। बोले, मैं जाऊंगा तीर्थ में, निकला हूँ, लड़ाई करूंगा नहीं करके आए, आ करके हम ब्राह्मण को क्लास दे रहा था, उसको मार डाले सबसे पहले। यहाँ तक कम से कम धर्म जो थे सारे अधर्मी पापियों को मारना था, वहाँ मारे नहीं, ये बेचारा क्लास में बैठा था, छोड़ो उनको आगे मार डाल। राम जी के मूड। और तो फिर उन्होंने बोले, तो फिर बोले, कोई बात नहीं, उनके बेटा को गदने सिंह कर देते हैं। उनका बेटा अभी इतने मैच्योर नहीं था, लेकिन फिर भी उनके बेटा व्यास जी के पुत्र सुत गोस्वामी के स्टूडेंट था। अब भी अभी उसने हरिद्वार गया था, शुक्रताल में कथा सुन करके आया था। तो उनका नाम था उग्र सवा श्रुत, रोमहर्षण के पुत्र थे, उग्र सवा, जो सुनने में उग्र है, श्रवण करने में सो अप्ट लिसनर, इससे एक्सपर्ट सुनने वाला था, इसको कहा जाता उग्र सवा, श्रवण करने में महाउग्र है, इतने बढ़िया सा श्रवण करता था, तो इसलिए उग्र सवा था। तो उनको बलराम जी ने एम्पावर किए, उनको बैठाए, ऐसे तो उनको ज्ञान था, लेकिन बलराम जी ने उनको और डाउनलोड कर दिए, उन्हें सारे पता चल जाएगा, तो कोई बात नहीं, बैठा दिए उनको। तो उन्होंने कथा शुरू किए। अब असली भागवत बोलना, उग्र सवा सुत बोलना शुरू किए, और सुनकादि भी उनको बोले, बोले सुत गोस्वामी, आपके पापा तो बोल रहे थे इतने सकड़ों साल से हम कर रहे थे, लेकिन कुछ होता नहीं है, इन्हें स्वाहा करने से ना सुनने से कुछ नहीं होता हमारा, हाँ कुछ बताइए, कुछ होने वाला, अभी टाइम ओवर होने वाला है, अभी 800-900 साल पूरा हो चुका है, अभी 1000 साल पूरा हो जाएगा। तब वो उग्र सवा सुत भागवत बोलने लगे, तब तो उनका कल्याण हुआ, उनका जो ऑब्जेक्ट पूरा हुआ। तो इस प्रकार से ये भागवत के जो आदि क्षेत्र उसको माना गया, वो जो क्षेत्र है नमिष अरण्य स्थान में, दो नमिष और अरण्य दो शब्द से जुड़ा, अरण्य माने जंगल बनानी, नमिष निमिष शब्द के कई अर्थ है, जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मा जी ने जो मन में चक्र भेजे, उनका निमिष जहाँ विसीर्ण हुआ, विदीर्ण किया, इसीलिए निमिष कहा गया। लेकिन निमिष शब्द भागवत आदि पुराण में और जगह में आप पाते हैं, निमिष शब्द आप श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय में देखेंगे, जब श्री विदुर मैत्र मैत्र मुनि सब कालगणना सिखाते हैं, कालगणना करते हैं, तो इसमें टाइम का हमारे पास तो सबसे लास्ट डिजिट आजकल मॉडर्न एजुकेशन में सेकंड है, सेकंड से नीचे कुछ है नहीं, लेकिन मैत्रेय मुनि जो वैदिक साहित्य से कालगणना का वर्णन करते हैं, उन्होंने परमाणु से लेकर के कल्प पर जो महाकल्प पर्यंत वर्णना की, कितने टाइम का सिस्ट कितने लंबे टाइम होता है, तो उनमें से वो जो अलग अलग समय का एक एक नाम रखे हैं गिनती का, तो बोलते हैं कि सबसे छोटा परमाणु है, दो परमाणु मिलने से एक अणु होते हैं, सबसे लास्ट डिजिट है परमाणु, दो परमाणु होने से एक अणु, और तीन अणु मिलने से एक त्रसेणु, और तीन त्रसेणु मिलने से एक त्रुटि, ये सब समय का नाम है, जैसे सेकंड मिनट में एक त्रुटि, सो त्रसेणु से तीन त्रुटि मिलने से एक वेद, तीन वेद से एक लव, लव मात्र कहते ना, तीन लव होने से एक नमी से, इसमें भागवत मनना के नमी से यहाँ आया, तीन लव का इकट्ठा समय को तो एक नमीष कहा जाएगा, तो नमीष मतलब आँख मिचलने में जितने समय लगता है, ये उसके पीछे और कितने छोटे छोटे डिजिट है, समय का कितने सुखों विभाजन के आ गया है, लेकिन इतने सुखों तक को गणना नहीं कर सकते, तो वैदिक कैलेंडर में निमिष से ही गणना शुरू करते हैं कितना निमिष है, तो निमिष मात्र से मतलब आंख बंद करके खोलने में इतने समय में भगवान ने सृष्टि सर्जना कर सकते हैं, ये काल गणना में इसलिए कहते हैं, काल के ये जो पॉइंट है निमिष, ये जो स्पेसिफाइड पॉइंट जितने टाइम है, इसी टाइम में भगवान संपूर्ण सृष्टि कर सकते हैं, संपूर्ण सृष्टि को विनाश भी कर सकते हैं, बनाना बगाड़ना बिगाड़ना दोनों काम कर सकते हैं, इतने टाइम इज़ इनफ, एक निमिष आँख, इसको क्या बोलते हैं आँख, जब पलक झपकने से, पलक झपकने का जितने समय, इतने समय, एक बार ऐसे हुआ भी था, यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण समाज यहाँ रहते थे, और वहाँ एक राक्षस आकर के खूब दिक्कत किया, मारपीट कर बहुत सारे प्रार्थना किए भगवान को, तो भगवान ने बोले कोई बात नहीं, जाओ मैं करता हूँ, ना अरे मार रहा है इतने मर गए, तो भगवान ने तुरंत अपने चक्र भेजे, तो चक्र आया उस दिन निमिष पलक झपकते ही सारे असुर और उनके सना को विनाश करके चला गया, तो इसलिए इस क्षेत्र में मारा था करके निमिष क्षेत्र उसको कहा गया, तो इसलिए अरण्य था, इसलिए निमिष अरण्य, वहाँ भगवान हर युग में रहते हैं अपने हिसाब से, सत्य युग में ये महातीर्थ तभी था जब प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को पूछे, बोले गुरु जी अभी जो होगा सो होगा, मैं थोड़ा तीर्थ करना चाहता हूँ, कोई पूरे इस धरातल पर यह लोक में संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे उच्च कोटि के प्रभावशाली तीर्थ क्या बताओ, बोले केवल तीन ही लोक में, उच्च लोक में, नीचे लोक में, मध्यम लोक में, तीन लोक में तीर्थ कौन सा बड़ा बताओ, तो शुक्राचार्य तो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने बोले देखो ऊपर लोक में पुष्कर क्षेत्र है, पाताल लोक में एक तीर्थ बताया पुष्कर, और इस लोक में नवीसारण्य है, तो इस तीनों लोक से ही ये महान तीर्थ है, हमेशा भगवान यहाँ रहते हैं, भगवान शंकर रहते हैं, भगवान ब्रह्मा भी रहते हैं और विष्णु भी रहते हैं, तीनों अपना बहुत सुख हो सकते, तो इसलिए ये महातीर्थ है, तो उनसे गुरु जी से नवीसारण्य की महिमा प्रहलाद ने सुने थे शुक्राचार्य से, सुन करके उन्होंने भी नवीसारण्य दर्शन करने आए थे, बोले पितवास धारण कर ले भगवान नारायण सख्यात यहाँ रहते हैं, तो प्रहलाद ने उनको दर्शन करने के लिए आए आए, तो भगवान ने एक शिकारी के रूप में उनको मिले, सबसे पहले शिकारी समझते ना, धनुष बाण लेकर चले, लेकिन वो सन्यासी रूप में था, रूप था उनका सन्यासी, जटाजूट धारण किए थे और कसाय वस्त्र धारण किए थे और धनुष बाण भी लिए थे, प्रहलाद जी बोले ये कैसा उत्पटांग लोग है, एक तो सन्यास देश में है और हाथ में बंदूक लिया और धनुष बाण लिया, ये कौन से जात के क्या है कोई डिसाइड नहीं कर पाता। तो उनको पूछे, बोले तुम कौन है, क्या कैसे कर रहे हैं। उन्होंने बोला तुम कौन है, मुझे बचने वाले। प्रहलाद राजा है, इतने बड़े हिरण्यकश्यप के बाद में वही उनके राज्य के पूरा राज्य के अधिकार हैं प्रहलाद, तो वो कैसे डरेंगे। हाँ शक्तिशाली। और उन्होंने उनको चैलेंज किया, वो भी चैलेंज किया, तो दोनों का लड़ाई शुरू हो गया, दोनों का युद्ध छिड़ गया। अब प्रहलाद जी सोचते थे कोई ये जंगली लोग है, जंगल का कोई आदिवासी है, अब पता नहीं इतने घमंडी है मेरे से लड़ने का आ गया। बोला मुझे नहीं जानता है, मैं प्रहलाद हूँ, मैं त्रिलोकाधिपति, ये क्या मुझे साथ करेगा। तो उन्हें घमासान युद्ध हुआ, दो दिन तीन दिन तक युद्ध चला, कोई किससे जितने पर प्रहलाद जितने प्रकार के काट था जो अस्त्र शस्त्र सब चलाए, लेकिन वो कुछ कम तो था नहीं। जल्दी भी जंगली शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का था, लेकिन वो भी सारे काट था उनके पास। प्रहलाद जी परेशान हो गए, बोले बताश होगा उसको जीत नहीं सकता हूँ, कोई किससे कम नहीं पड़े। तो प्रहलाद जी अपनी इज्जत के सवाल था, बोले मैं राजा हूँ, इतने लोग मेरे साथ आए, ये एक STSC उनको मैं जीत नहीं सकता हूँ, वेरी शर्म की बात है ना इज्जत के सवाल। तो बोले किसी प्रकार से तो कल फाइनल कुछ करना ही पड़ेगा। तो आ करके अंत था, जैसे आपको कोई दिक्कत आता है तुरंत नरसिंह वंदना गाते हैं, तो प्रहलाद जी तो थे ही परवान। तो आ करके अपने इष्ट देव नरसिंह देव को पूजा किए, बड़े भली भांति बोले आज के युद्ध से जाने पहले ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर जाऊंगा, नरसिंह जी के कृपा से कुछ होना चाहिए। तो सुबह उठ करके स्नान टान करके जंगल से जाकर बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित फूल तोड़ करके लाए, ला करके माला बना करके आपने जो नरसिंह शिला रखे थे, नरसिंह भगवान के विग्रह, तो उनसे पहना करके उनको अभिषेक करके पहना करके खूब स्तुति प्रार्थना किए। बोले प्रभु मेरी इज्जत के सवाल है, मुझे खूब आप दया किए, मेरे लिए आप सब कुछ किए हैं, तो आज ये कर दीजिए नहीं तो। तो प्रार्थना पूजा करके माला वाला पहना करके सारे स्तुति करके आज निकले थे युद्ध में। और जाकर लड़ाई के मैदान पर जैसे दोनों सामने खड़े हो गए, तो प्रहलाद जी ने बाण चनल से पहले मार किए, जो माला उन्होंने आपने इष्टदेव को पहनाए थे नरसिंह साहब, वो माला तो उनके गले में दिखाई पड़ रहा है। बोले मैंने खुज फूल तोड़ के बनाया था, ये कैसे माला में वहाँ अपने घर में इष्टदेव को पहना, ये अपने गले में पहना है। तो गन डाउन किए, बोले कुछ गड़बड़ है, ऐसा कैसे। तो फिर जब पास में जा करके माला को नजर की, भगवान को समझ गए, देख लिए वो क्या कर, माला तो वही पहना, मैं निकाल नहीं सकता, वो बड़े प्रेम से मुझे पहनाया, मैं इसको निकाल कर फेंक नहीं दूंगा, वो आज ही तीन दिन से मुझे आज ही पहनाया माला तोड़कर, बड़े प्रेम से खुद अपने हाथ में बनाया, मैं कैसे इसको निकाल कर फेंक सकता हूँ। तो भगवान निकाल नहीं रहे थे, निकाल रहे थे जो बनाने वाला, देखा मैंने बनाया था। तो माला को देख करके और लड़ाई क्या करेगा, जाकर हाथ जोड़ के चरण में गिरा, बोले प्रभु ये क्या है, आप ही तो है। तब भगवान भी धनुष छोड़ करके उनका आलिंगन किए, बोले हाँ प्रहलाद मैं हूँ। बोले आप न, मैं परीक्षा करना चाहता था, तो आया था मुझे दर्शन करने के लिए, तो कैसे है, फिट फाट है कि नहीं, इसलिए लड़ रहा, वेरी गुड, ठीक है, तो मेरे से कैसे जीत सकता था, वही जीतने का उपाय माला पहना दिया, इसलिए पकड़ में आ गया। तो भगवान प्रहलाद जी ने भगवान को, भगवान बोले थे मैं हमेशा यहीं रहता हूँ, इस प्रकार से नमिशरण्य मेरा प्रिय क्षेत्र है, जाता हूँ। तो प्रहलाद जी का दर्शन हुआ था। तो इस प्रकार हरेक युग में हरेक काल में हम देखते हैं यहाँ भगवान उनका लीला होता है, भगवान आते हैं रहते हैं। इस क्षेत्र में भगवान राम भी लगभग तीन बार आए थे, क्योंकि अयोध्या से ज़्यादा दूर नहीं है, ये तो आप देखें सुबह आए, आप चित्रकूट से अयोध्या पहुँचने के लिए जितने तपस्या करना पड़ा, अब अयोध्या से यहाँ आने में तपस्या कहाँ करना, ब्रेकफास्ट करते करते पहुँच गए, रूम रेडी नहीं हुआ था पहुंच गए। इतने फट से पहुंचे, क्योंकि अयोध्या का आउटस्कर्ट एरिया है, और क्योंकि ये बहुत मन को एकाग्र करने वाला ऋषि मुनियों का तपस्थली, इतने पवित्र क्षेत्र है और यज्ञ आदि करने के लिए सबसे उचित क्षेत्र है, तो इसलिए सारे पवित्र कर्मा यहीं भागता था। इवन राज बड़े बड़े अयोध्या के चक्रवर्ती राजाओं का जो भी पवित्र धार्मिक कर्म यहीं हुआ करता था। ऐसे वर्णन आता है दशरथ महाराज ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, जो श्रृंगी मुनि कथा पता है ना, श्रृंगी ऋषि, ऋषि श्रृंग विभाण्डक पुत्र, मैं बताता ना संता को अधिकारा दूंगा, तो उनको बुला करके जो पुत्रिष्ठ यज्ञ यहीं दिखे, पुत्रिष्ठ यज्ञ अयोध्या में नहीं हुआ, ये अयोध्या का एरिया था, तो यहाँ पर पुत्रिष्ठ यज्ञ कराए थे ऋषि संघ मुनि, यहीं आकर यज्ञ कहते थे पुत्रिष्ठ यज्ञ। आप पुत्रिष्ठ यज्ञ करे तो दशरथ महाराज रानियाँ सब आए थे, सारे यहीं यज्ञ हुआ था, तो वहीं पर उनको सफल काम हुआ था, यज्ञ चारू मिला था, तो राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत के जन्म का जो सफलता यहीं से प्राप्त हुआ था। तो उसके बाद में जब भगवान ने अपने स्कूलिंग पूरा हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तभी बोले मुझे एक बार हमने चाय करके, तो दशरथ महाराज से परमिशन लेकर के राम लक्ष्मण भरत आए थे यहाँ नमस्कार, क्योंकि इतने सुंदर पवित्र जगह था, यहाँ घूमने के लिए आते थे, जैसे आप चुने इस साल में यहाँ आने के लिए, जो भी तो भगवान राम में चुनते यहाँ आने के लिए। और तीसरा बार आए थे जब उन्होंने राजा हो गए थे, रावण वध करने के बाद में आ करके उनके राज्याभिषेक ग्रह हो चुका था, राजा हो चुके थे, तभी एक बार आए, बोले यज्ञ करूँगा, क्योंकि ब्रह्म हत्या दोस्तों यहाँ वहाँ लगा, लेकिन ऋषि मुनि ने उनका मन में भगवान राम का था, ब्राह्मण जो भी था, रावण ब्राह्मण था एक बार, तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ कराए। ऋषि मुनि बोले कि कोई बात नहीं, नमस्कार में यज्ञ कराएंगे वो तो निश्चित सफल होगा, तो वहाँ यज्ञ कराने के लिए भगवान राम आए थे ब्रह्म हत्या दोष निवारण के लिए, यहाँ विशेष अश्वमेध यज्ञ कराए। त्रेताजु के युग धर्म यज्ञ ही था, तो भगवती सीता भी उनके साथ में आई थी, और यहाँ अनेक दिन तक यज्ञ हुआ, हजारों संख्या में ऋषि मुनि ब्राह्मण आए थे। सीता जी ने भगवान राम को रिक्वेस्ट की, बोले प्रभु इतने सारे ब्राह्मण आए हैं, इसे यज्ञ में इतने ब्राह्मण तो मैं कभी नहीं देखा, ये नमिषारण्य के नाम से बहुत इकट्ठा हुए सब आए हैं, अब आप मेरे नाम से उनको कुछ भूमि दान अग्रह करिए, बेचारे ब्राह्मण गरीब होते हैं। तो सीता जी की रिक्वेस्ट सुन करके भगवान राम ने, भगवान राम तो उदार शिरोमणि है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा भूखंड सर्व ब्राह्मण जो आए थे उनको दान दिया, दान दे करके इस भूखंड का नाम सीताजी के नाम से कर दिया, इसीलिए क्षेत्र में जो बैठे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है, सीताजी के नाम से भगवान ने रख दिए इस नाम, और वहाँ पर ऋषि मुनि ब्राह्मण को सीतापुर पूरा डिस्ट्रिक्ट दे दिया उनको लिख दिया। ऐसे होते हैं आजकल तो आप कितने गज, 200 गज, 250 गज इतने करते हैं साइन फाइन, तो भगवान ने एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया उनके लिए, नहीं सीता जी के कहने पर। और उसके बाद में यज्ञ अनेक दिन तक चला, ऐसे वर्णन है कि जब सीता जी गर्भवती थी तो उनको जो वनवास में भेज दिया गया है ना, नहीं तो वो भी वाल्मीकि आश्रम के पास में लक्ष्मण ला के छोड़ के गए, और वाल्मीकि आश्रम के एरिया भी इसके अंदर ही आता है, यहाँ से कानपुर लगभग 150-200 किलोमीटर है, इस क्षेत्र को बैठूर क्षेत्र वाल्मीकि क्षेत्र बोलते हैं, कि सीता मैया ने यहीं वाल्मीकि आश्रम था यहीं रुकी थी, और यहीं पर जो विश्वामित्र मुनि ने ना कौन थे वो वाल्मीकि मुनि ने लव कुश को रामायण सिखाए थे, और यहीं पर यज्ञ का जो फाइनल डे था, लव कुश को ले करके वाल्मीकि ऋषि आए, और सीता जी भी साथ में आई थी, यहाँ आकर रामायण का गान किया था, गान किया गया था, जो हजारों हजारों संख्या में अयोध्यावासी ब्राह्मण सब थे, सभी के सामने फर्स्ट रामायण रिसाइटेशन लव कुश ने यहीं पे किए थे, इस फंक्शन में किए थे, जिसमें भगवान पहचान लिए, और ऋषि को पूछे वाल्मीकि, बोले मेरे पुत्र हैं, तो उनको पुत्र आपने स्वीकार किए, और सीता भी समझ गए सीता जी है करके, सीता जी को लेने के लिए जब बोले कि आप भी ले सकते हैं, ये सीता जी हैं, तो भगवान ने पब्लिकली बोले कि कोई बात नहीं, पुत्र को तो मैं स्वीकार करता हूँ, सीता जी की थोड़ा चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा, और एक बार उनको परीक्षा देना पड़ेगा, उनकी शुद्धता की परीक्षा लेने के, तो सीता जी बोले बस कोई बात नहीं, तो उन्होंने यहीं पर भूमि में समा गई थी, स्थान पर भगवती सीता, किसी ने मुझे बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि देखिए सीता देवी को उदाहरण से हम समझ सकते हैं, उन्होंने राजपुत्री रही, किसके, विदेह राज, इतने बड़े ज्ञानी, जो जीते जी देह से परे थे, इसलिए विदेह कहा गया। जनक महाराज की तरह ज्ञानी तो है ही नहीं, सभी जानते हैं, आप जानते हैं जनक महाराज इतने बड़े 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 ऋषि मुनि उनके सामना नहीं कर सकते। ये सख्यात देह से परे थे, देहात्म बुद्धि से परे थे ही विदेहराज। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े प्रभावशाली राजा के बेटी हैं सीता, और ससुर उनका कौन बने, जो तभी जमाने में वो चक्रवर्ती नरेश थे, हजारों साल से पूरे पृथ्वी ससागरा धरा का चक्रवर्ती नरेश थे दशरथ महाराज। यहाँ तक कि जनक महाराज भी उनके अंडर के राजा होते थे, ये मेन थे, क्योंकि पूरे विश्व उनके अंडर में था, दशरथ महाराज के अंडर में, जो इंद्रासन में बैठने वाले थे, इतने बड़े राजा उनके वधु बने, कितने विशेष, पूरे पृथ्वी के राजा थे, इतने बड़े वो ज्ञान और बल और धन पदार्थ दशरथ महाराज के समान कौन करेगा। और तो और पति मिले भगवान राम जैसा, उनके जो शिव धनुष को उठाकर खेलते खेलते तोड़ डांट देनी, इनको कोई नहीं तोड़ पाते थे। राजपुत्री, ससुर भी राजा, भगवान पति बने, लेकिन विवाह होने के बाद में वनवास मिला, सुख थोड़ी मिला। हाँ, इतने बड़े जिनका पिता है, ससुर इतने बड़े, तो ठीक ठाक रहेगी, ठीक ठाक थोड़ी रहेगी, वनवास के दुख, जंगल में जाना पड़ा। केवल वनवास नहीं, वनवास से आए तो कुछ दिन रहे थे नहीं, फिर उनको गर्भवती अवस्था में नहीं, वनवास के बाद भी एक अग्नि परीक्षा देना पड़ा, वहां पर लंका में अग्नि परीक्षा देना, वहां भी एक बार अग्नि प्रवेश करके अग्नि परीक्षा देना पड़ा, और सेकंड टाइम प्रेग्नेंट अवस्था में उनको घर से निकाल दिया गया। और लास्ट तो बोलते हैं कितने कष्ट, कष्ट होना कुछ सवाल तो था नहीं, उनके पापा उनके इतने बड़े थे, ससुर इतने बड़े थे, हस्बैंड ऐसे थे, और स्वयं कुछ कमी नहीं थी, फिर भी इतने दुख, क्या उन लोग ने उनको मदद नहीं कर सकते, तो उनके पिताजी नहीं कर सकते। तो इसमें कहा जाता है कि चाहे आपके पिता माता भाई बंधु कुटुंब कितने महान कितने समर्थशाली क्यों ना हो, अगर आपके कर्म में दुख होना है तो कोई नहीं रोक सकते, है ना, नहीं सभी समर्थ होते हुए भी आपका अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा। ये प्रमाण है दशरथ जनक जैसे बड़े बड़े उनके हितैषी इतने तो उनको नहीं कर पाए, तो हम लोग क्या करेंगे। हम चाहते हैं बेटे को ये को ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका कर्म वो भोगेगा ही, हम कुछ कर ही नहीं सकते, उनके जैसे समर्थ तो हम लोग हो ही नहीं सकते, ऐसे समर्थ थे। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में भगवान राम अयोध्या के नरेश लोग आते थे वहाँ बार बार यहाँ, क्योंकि यज्ञ सफल करने का सबसे बड़े यज्ञ वेदी था ये, तो इसलिए अनेक धार्मिक यज्ञ सफल यज्ञ यहाँ हुआ है, उत्कृष्ट यज्ञ, समेत यज्ञ आदि आदि, और उसके अलावा अनेक अनेक समय में अनेक अनेक युग में यहाँ जितने भी धार्मिक पवित्र धर्मारण्य, इसका धर्मिशारण्य का एक दूसरा नाम था धर्मारण्य, हाँ धर्मारण्य करके कहा जाता था, भगवान शंकर के एक भक्त थे वहाँ, कई हजारों साल तक तो यहाँ तप करके धर्म साधना किए थे, उनके नाम से धर्मारण्य हुआ था, भगवान शंकर हमेशा रहते हैं इस पर करो। वहाँ पे जो नदी है गोमती, धनुमती, गोमती या धनुमती उनको कहा जाता है, उसमें कहते हैं कि बाकी में तो गंगा में भगवान के चरणादुख है, जमुना जी भगवान के प्रिया है, बोली ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही द्रव इसमें इकट्ठा हुआ है, गोमती में धनुमती में, इसमें इतने पवित्र नदी हो। चक्र तीर्थ तो साक्षात चक्र का तीर्थ है, चक्र भगवान के विष्णु के मनोमय चक्र छेदन हुआ था, चक्र कुंड देखेंगे चक्र तीर्थ है, कई लोग चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं, नहीं तो गोमती स्नान के बड़ा महिमा है, जो मैं बताया कि 88,000 लोग आए थे, वो बोले कैसे, तो उनको प्रावधान दिए थे, बोले एक बार गोमती के स्नान करके आ जाए तो भूख और प्यास मिट जाएगा, ऐसे तो गोमती स्नान करके गोमती स्नान के महत्व था, इस प्रकार उन्होंने कथा सुने थे गोमती में स्नान करके। और कोई सीटिंग अरेंजमेंट हल फल नहीं था, पेड़ के नीचे बैठे थे, इतने भारी संख्या में थे रह करके आके, तो वहाँ पर श्री सुत गोस्वामी ने पहले पुराण वक्ता किए थे, सुतगद्दी है, उसके बाद उनके बेटा वो भी भागवत कथा कहे, उसके बाद कहते हैं वो होने से पहले पहले जमाने में जो व्यास देव का जन्मस्थान तो कल्पी कानपुर के पास में है, लेकिन उन्होंने अपने आश्रम बद्रिका आश्रम, वहाँ उनके सम्य प्रास करके अपना आश्रम है, वहाँ जाने से पहले उन्होंने वेद पुराण आदि की रचना इस क्षेत्र में किए थे, इसलिए व्यासपीठ भी इसको कहा जाता है। वेद विभाजन आदि के कर्म यहाँ से भी किए थे व्यास जी ने, संकलन कही, तो इसलिए व्यास गति भी है। सारे ऐसे पुण्य पवित्र कर्म धर्म कर्म में श्रेष्ठ नवीशारण्य युग युग में पवित्र तीर्थ माना गया है। आप एक प्रसिद्ध कथा सुने होंगे, जो अभी अभी मैंने पंजाब राज्य में था, एक प्रसंग भागवत में चल रहा था, धृतराष्ट्र धृतरासुर, और धृतरासुर प्रसंग में एक कथा आया था कि देवताओं ने उसको मार नहीं पाए, उनके अस्त्र शस्त्र खा गया। उनको भगवान ने बताया क्या क्या करने के लिए, दधीचि, दधीचि ऋषि का आश्रम यही है। यहाँ रास्ते में आते समय देखेंगे कि मिश्रित क्षेत्र यहाँ से 10 किलोमीटर है, और मिश्रित क्षेत्र दधीचि मुनि का आश्रम है। उनका नाम मिश्रित इसलिए है क्योंकि यहाँ सारे देवताओं ने आकर के वहाँ जो कुंड किए, सारे तीर्थ जल को मिला गया, 8 करोड़ तीर्थ को वहाँ मिला गया तो इसलिए हम मिश्रित कहा गया। कई कथा पुराण में अलग रहते हैं, भगवान विष्णु के चक्र इतने असुर वध करने के बाद भगवान उसको प्यूरिफाई करना चाहते थे, तो वहाँ भेजे समस्त ब्रह्मांड के तीर्थ जल 8 करोड़ तीर्थ को इकट्ठा कर चक्र को धुलाई की उसमें, तो इसलिए चक्र तीर्थ और मिश्रित क्षेत्र हुआ। तो कहते हैं कि नहीं, उनका इच्छा था दधीचि के शरीर छोड़ने से पहले मैं एक बार तीर्थ स्नान करूं, जल्दी व्यवस्था कीजिए। तो देवताओं ने संपूर्ण तीर्थों का आवाहन करके कुंड में रखे थे, जहाँ पर दधीचि ने स्नान करके अपने शरीर रखे अपने अस्थिदान देने के लिए, तो वहाँ क्षेत्र है। तो अलग अलग कथाएँ हैं, भागवत में वर्णन है भागवत के पुराण के अनुसार कि दधीचि मुनि वो स्वयं अथर्व ऋषि के पुत्र थे, तो उनके 2 पत्नी थे, 2 बहन थे ऐसे माना जाता है, लोपमुद्रा और गभिस्थिनी ऐसे थे। तो जब दधीचि ने शरीर छोड़ दिए तो उनकी पत्नी, उनका एक छोटा बेटा था, बेटा होते हुए भी बेटा को छोड़ करके वो सती हो गए उनके साथ में, तो इसलिए उनके बेटा को देखभाल करने के लिए कोई थे नहीं। तो बेटा नहीं ही अकेला था, पीपल के पेड़ था, और पीपल के छाल आदि पत्तल आदि खा करके जी गया, तो उसका नाम पड़ गया पीपल आदि, पीपल आदि मुनि कवि है खतरे ऐसे अद्भुत अद्भुत क्रिया है। ऐसे कहते हैं कि इंद्र पार्टी हो तो असुर से हमसे युद्ध करते थे, असुर कई नीचे में, कभी बीच में, कभी ऊपर, कहाँ भी हमला करते थे। एक बार लड़ाई करते 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 जीते, जीत करे हताश होकर आए, इस क्षेत्र में सारे देवता आते थे, इंदिरा गांधी पार्टी आए, दधीचि आश्रम में आकर बैठे, बोले देखिए अभी तो हम जीत करके आए मजा चखा कर, लेकिन हम लोग वापस जाना चाहते हैं, सब वेपन्स अस्त्र शस्त्र हम लेकर के जाएंगे, वो कभी भी बड़े माया भी चुरी करके सब ले जाएंगे, तो इसलिए हम चाहते हैं उसको वहीं सेफ डिपोजिट करके जाएं सारे अस्त्र शस्त्र, उसको क्यों इतना भारी वजन उठा के जाएं, यहीं आपके आश्रम में रखते हैं, जरूरत पड़ेगा फिर आपसे ले लेंगे। दादी बोले कोई बात नहीं, सारे देवता लोग रख लो, उनके आश्रम में एक गोडाउन खाली कर दिए, सारे देवताओं के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र सब यहीं रख लिए, रख कर चले गए। और लंबे समय तक कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं, अस्त्र की जरूरत नहीं पड़ा उनका, वो कुछ खबर कुछ लिए नहीं। कई सैकड़ों साल बीत गया, तो वो जंग लग रहे थे, मेटालिक जंग लग रहा था, तो उन्होंने पूछा अपने पत्नी से डिस्कशन, बोले क्या करें, नहीं तो खराब हो रहा है ना, हम तो बोल रहे थे रखने नहीं रखना चाहिए, आप बे मतलब हमारा अस्त्र से क्या मतलब है, हम ऋषि मुनि हैं, आप क्यों उसको रख लिए, अभी आप जो चाहें सो करें। बोले क्या करूँ, इतने सारे अस्त्र शस्त्र है, दिव्यास्त्र सब है, खराब हो रहा है, क्या करूँ। तो वो बड़े शक्तिशाली मुनि थे, जा करके सारे को अभिमंत्रित करके पानी कर दिए, सारे अस्त्र शस्त्र को जल में परिणत कर दिए, वो पानी को पी लिए पानी को पी लिए खत्म। और एक दो साल के बाद में कुछ लड़ाई हुआ शुरू, जो ललकारे उनको शुरू ने, तो दौड़ कर आए अपना अस्त्र शस्त्र के लिए, हाँ तो बोले सर हमारा हम रखे थे अस्त्र ना, अरे वो सैकड़ों साल बीत गया, सब डैमेज हो रहा था, हमें तो उसको पी गए ना, अरे अब पी कैसे गए, हम क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे, वो करेंगे। तो इस कारण से कहते हैं कि उनको फिर अस्थि निकलना पड़ा, मैं पीला कैसे दे सकता हूँ। तो जो भी हो, भागवत में जैसे मैं वहाँ भी बताया था, भगवान ने जब इंद्र सारे देवता ऋषि डर गए वृत्रासुर युद्ध में कि सारे अस्त्र खा गया वृत्रासुर ने, यहाँ वर्णन है कि ये खा पानी करके पी लेते, लेकिन वृत्रासुर खा गया था सारे दिव्यास्त्र सब खा गया। तो डरे बोलते सब खा गया, हमको नहीं खा रहा है, यही बड़ी बात है, अस्त्र सब खा गया। तो भगवान ने बोले आपका अस्त्र शस्त्र से मरने वाला है नहीं, आप जाओ, मैं आपको वृत्र मारण उपाय बताता हूँ, वृत्र मरेगा कैसे। आप जा करके दधीचि ऋषि के आश्रम में जाओ, उनके अस्थि लेकर के आओ, उनके अस्थि से अब विश्वकर्मा को बताना, मैं डिजाइन बताता हूँ, मैं आप बताता हूँ, उसमें ले करके उसको बनाएगा, सत आरी विशिष्ट वज्र बनाएगा, उसमें मैंने अपने शक्ति निहित करूँगा, तो उससे वृत्र मरेगा। तो यहाँ भी और भी कथा थे, मैं बताया था, आप सुने होंगे, जो अश्विनी कुमार के दधीचि ऋषि के पास आए थे ब्रह्म ज्ञान पढ़ने के लिए, क्योंकि वो फिजिशियन है हेवनली प्लैनेट पे, और यहाँ तो कोई बीमार पड़ते नहीं, तो फिजिशियन को कोई दो पैसा में नहीं पूछते, यहाँ भी बेच कर बेकार गया एक दिन भी कोई आदमी क्लिनिक में कोई बीमार होता नहीं, कौन आएगा कोई पूछते नहीं थे, इतने उनको छिछा कर करते थे बेचारे, बड़े बोर होते थे, अपने लाइन में नहीं बैठाते थे, जैसे आप बैठ कर प्रसाद लेते हैं, वो जैसे दोनों बड़े डॉक्टर है, तो बेचारे बड़े परेशान, बोले तो वो देवता नहीं डॉक्टर, यहाँ तक कोई मतलब नहीं, आप रोज बड़े बोर होते थे, हम पढ़े लिख करके इतना किए, लेकिन कोई हमारा पूछ नहीं रहा है, डॉक्टरों का डिमांड यहाँ है, वहाँ नहीं चलेगा, तो वहाँ पूछ नहीं रहे थे, तो इसलिए बोले कि अगर आप ब्रह्म ज्ञान सीख कर आते तो हम पास में बैठाते, आप ये नहीं जानते MBBS करके आए, इसलिए गेट आउट। तो बेचारे बड़े बोर होकर के ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए अब इंद्र सिफारिश नहीं करते थे, जहाँ स्वर्ग में पढ़ने के लिए कोई स्कूल में उनको एडमिशन नहीं होता था, तो उन्होंने यहाँ आए थे, दधीचि मुनि ने आज के ब्रह्म ज्ञान पढ़े थे, और पढ़ने के लिए जब आए थे तो इंद्र को पता चल गया कि वो जाकर के वहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो इंद्र ने आके धमकी दिया था दधीचि मुनि, बोला देखो मैं रिकमेंड नहीं किया हूँ, मैं राजा हूँ, देवराज हूँ, अगर आप उनको पढ़ाएंगे तो मैं गला कट डालूंगा आपका, खबरदार। तो डर गए, तो बाद में वो दोनों आए, अश्विन कुमार बोले गुरु जी पढ़ा दीजिए, नारे मैं आपको बताया तो था, लेकिन आपके राजा इंद्र ने आकर मैं धमकी देकर गया, मर्डर कर डाला, बोले कोई बात नहीं गुरु जी, वो आपका गला काटेगा ना, हम पहले काट देते हैं बोले आप मेरे से पढ़ेंगे मेरे छात्र ना गुरु जी, हम यही हमारा अभी क्लिनिक में कोई एक काम ही नहीं होता, कोई आते ही नहीं, हमको जितने हम सर्जन है जैसा काम है हमारा कोई दिखा नहीं पाते, हम आपसे कम से कम पहले शुरू कर देना क्या, बोले हमको गला काटना जोड़ना ये बाएं हाथ के खेल है, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, अभी हम गला पहले से काट देते हैं और दूसरे गला लगा देंगे, आप पढ़ा दीजिए, कोर्स कंप्लीट होने के बाद इंद्र आकर गला काट देंगे, आप ओरिजिनल गला फिर लगा। तो ऐसे भी हो रहा था, अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर इतने एक्सपर्टिस थे, तो उन्होंने सबसे पहले दधीचि के गला काट दिए, काट करके फ्रिज में रख दिए, फिर गला ही नहीं हो गए, धड़ है केवल सर ने, तो एक घोड़ा घूम रहा था, एक घोड़ा को गला काट लिए, एक घोड़ा के धड़ को फ्रिज में रख लिए, डिफ्रीजर में रख करके उस गला को ला करके जोड़ दिए गुरुजी के धड़ में, अब गुरुजी जी बिना ऑपरेशन थिएटर में ये सब करके जोड़ दिए, तो फिर उनको पढ़ाना शुरू हुआ, तो उनका जो कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट होने के बाद इंद्र को पता चला हो तो सर्टिफाइड हो गए, उनके पढ़ लिए उन्होंने, उनको तो कोर्स कर लिए, तो इंद्र ने गुस्सा होकर आया, इतने गुस्सा होकर आया, आप पहले से कम से कम देखा था भाई आदमी की तरह दिखता था, अभी आदमी की तरह दिखता नहीं, घोड़े की तरह दिखता है, वो फोटो भी नहीं देखा, वो गुस्सा में आया, आके त्रल निकाला, काट दे सीधा लगा, अरे तो पहले दिखता कैसे था, मुझ था, बाल था, आँख था, ये घोड़ा मुख है, ये कैसे सोचना, नहीं काट दिया, जैसे काट दिया वो खट के नीचे छिप कर बैठे थे दोनों शिष्यों, जैसे इंद्र ने गला काट कर चला गया, तो दोनों उठे, घोड़े के कटा हुआ गला लेकर के फ्रिज में रखे थे घोड़ा के, तो पहले का घोड़ा धड़ उसमें जोड़ दिए, और गुरु जी का जो पहले का सर उसको ला कर गुरु जी से जोड़ दिए, ऐसे करे थे गुरु जी, फिर ठीक ठाक हो गए। इसलिए इस श्लोक में ब्रह्म ज्ञान को अश्वशिरा ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि घोड़े के सर में ब्रह्म ज्ञान पढ़ाए थे उन्होंने, इसलिए इसका एक नाम है अश्वशिरा ज्ञान, अश्वरूपी सिर पर दिए थे। एक दूसरी कथा है, अगर आप कल जाएंगे दर्शन में गोमती के पास में, एक कुंड है सूर्य कुंड, सूर्य कुंड है उसमें ऐसे कथा है कि जो सूर्यदेव हैं उनके पत्नी थी संज्ञा, अब जानते होंगे संज्ञा सूर्य पत्नी है। जब संज्ञा से शादी हुई, संज्ञा गया सूर्य भगवान के पास, सूर्य भगवान के पास इतने तेज था, अब देखते हैं तो ज्वलंत पिंड है, तो उनको टॉयलेट नहीं कर पाए, इतने गर्मी, इतने सो पावरफुल हीट, तो रह नहीं पाई सूर्य लोक में सूर्य के साथ, उनका बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील की, तो उन्हें परेशान हो गया और रह नहीं सकता पति के साथ। तो उन्होंने अपना एक दासी जिनका नाम था छाया, सूर्य की दो पत्नी माना जाता है संज्ञा और छाया, तो छाया अपने दासी थी संज्ञा की, संज्ञा थी मेन पत्नी थी, उन्होंने सूर्य को तेज को हाई हीट को संभाल न करके अपने दासी को अपने अलंकार साड़ी पहना करके पति के पास छोड़ करके भाग गई, आगे के कहाँ जाओ नवीस क्षेत्र में आ गए, ये सबसे आ करके गोमती नदी के किनारे वहाँ बैठ के तपस्या करने लगी, पति मुझे रुष्णा हो जाए, मैं क्या करूँ, मैं रह नहीं सकती, सो हाई हीट, तो आकर के यहाँ तप कर रही थी, लेकिन कोई पकड़ा ना जाए, कोई फटोफट भेजना दे सूर्य देव तो ढूंढते होंगे, तो इसलिए अश्व रूप में अश्विनी, अश्विनी मतलब घोड़ी, घोड़ी बन करके वहाँ तप करने लगी गोमती किनारे तपन, और सूर्य भगवान ने उनको पता नहीं था, और लेकिन पता चल गया तो डुप्लीकेट वाइफ है, तो सूर्य भगवान ने फिर पता कि भाई क्या है बात, ना ऐसे ऐसे हो मैडम, तो गए कहाँ गए, सूर्य भगवान को बुरा लगा, खूब पता लगा, बोले मुझे बता होता तो मैं थोड़ा वॉल्यूम कंट्रोल करता, वोल्टेज कम करता, उन्होंने मुझे बताई नहीं और डर के मेरे भाग गई। अब तो उन्होंने सूर्य भगवान बड़े परेशान होकर ढूंढने लगे, ढूंढ ढूंढ करके उनको पता चला, बहुत दिन के बाद कई प्रकार से पता चला कि उन्होंने एक अश्विनी एक घोड़ी के रूप धारण करके नवीसारण्य में गोमती किनारे तप कर रही है, तो भगवान सूर्य को पता चला तो उन्होंने भी अश्वरूप धारण करके आए, भले घोड़ी के पास तो घोड़ा ही जाएगा, घोड़ा रूप धारण करके आए, आकर उनके पास पहुंचे, थोड़े दोनों को पहुंचा गया, वो वहाँ वोल्टेज स्थान है घोड़े में तो फिर दोनों साथ में रहे, तो वहीं पर उनके दो पुत्र हुए अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हें डैडी मम्मी दोनों घोड़े घोड़ी थे, अश्व अश्विनी थे, तो इसलिए अश्विनी कुमार के तेजस्वी पुत्र हुए दोनों, तो इसलिए उनका नाम अश्विनी कुमार हुआ, तो इसलिए इस क्षेत्र में उनका पहले से परिचित था, तो इसलिए वहीं आए पढ़ने के लिए, उन्होंने बोले यहाँ तो हमारे दधी जी ऋषि हैं, उतना ज्ञान पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहीं आ गए थे, यहाँ भी सूर्य कुंड है, भगवान सूर्य के दक्षिण करने से पार निकला सूर्य कुंड हुआ था, एवं उनके संज्ञा नाम की पत्नी के फिर रहकर पुत्र के बाद फिर साथ में ले गए, तो कोई बात नहीं वोल्टेज डाउन कर देंगे आप चलो साथ में ले गए थे। इसी क्षेत्र में आपको पता है जब आप रामायण पढ़े होंगे, भगवान राम के प्राकट्य के कई कारण है, एक मुख्य कारण है कि दशरथ महाराज पहले जन्म में मनु थे, दशरथ कौशल्या मनु शत्रुपात है, पढ़े होंगे ना, मनु शत्रुपात है, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या किए थे, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र स्वयंभू मनु है, ब्रह्मा जी दो रूप में हुए, सबसे पहले ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे मानसी सृष्टि होता था, मन से सृष्टि करते थे, वो बढ़ नहीं रहा था, मन से जो बेटे बना रहे थे और उनको बोलते थे बेटा आप कुछ और कृष्ण बढ़ाओ, वो नहीं बढ़ा रहे थे, सब बाबा जी बनते थे, ब्रह्मा जी परेशान हो गए, बोले डैडी ये काम नहीं होगा, पिताजी को मैं नारायण को कंप्लेंट की, बोले मैं जितने करता हूँ सृष्टि आपने जो मटेरियल दिए जो सो फार्मूला दिए वो कोई नहीं कर रहे, बोले पहले सेट मेरे बनाया चार लड़के वो तो मुझे ही ज्ञान देने लगे मान नहीं रहे, हाँ बोलते हैं कि सबसे पहले सृष्टि के सबसे प्रथम पुत्र मतलब मनु और शत्रुपा के ब्रह्मा जी दो रूप में उनके पहले पुत्र हुए चतुर कुमार, नहीं ब्रह्मा जी के पुत्र मनु शत्रुपा नहीं हुए थे, अभी ब्रह्मा जी के यदि सबसे फास्ट ब्याच के चार लड़के थे वो कौन थे, सनकादि कुमार सनकादि परमहंस, तो जैसे पुत्र हो उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने बड़े प्रसन्न होकर बोले बेटो ऐसा करो आप प्रगति करो, हम प्रजापति हैं प्रजा उत्पन्न करो बढ़ाओ, वही हमारी इच्छा है, भगवान का ही हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सीधा अपने पिताजी के प्रथम आदेश को मना कर दिया, प्रत्याख्यान की, ब्रह्मा जी बोले ये क्या है भाई, हिस्ट्री में रिकॉर्ड में आ जाएगा द फास्ट ब्याज के सन फास्ट पिता के फास्ट ऑर्डर को डिफाई कर दिए। तो इस इसी के पर्पट में ये लिखा जाता है, मतलब लिखते हैं कि ये एविडेंस है। जैसे कभी कभी आप कोर्ट लॉ में कोई काम होता है तो एविडेंस पूछते ना, कोई कारण है क्या। तो इसलिए किसी को अगर माता पिता किसी को जबरदस्त शादी करने के लिए बोलते हैं, आप शादी नहीं करना चाहते मना करते हैं, तो बोलेंगे गलत कर, पिता की बात नहीं मानते, बोले एविडेंस दिखा सकते हैं, बोले एविडेंस है। द फास्ट ग्रेड के सन और फास्ट पिता ब्रह्मा जी की बात को ग्रह कर दिए और उनको दोष नहीं लगा, भगवान ने स्वीकार, बोले चलेगा। इसी मामले में आपके बात का दोष नहीं लगेगा, अन्य कोई बात होता तो दोष लगता, इसी मामले में दोष नहीं लगेगा, निर्दोष है। तो इसके लिखा गया कि अगर पिताजी के इस बात को अगर आप डिफाय करेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा, पितृ आज्ञा पालन करने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे फोरफादर उनको की ये बात की। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने परेशान हो गए। उसके बाद जितने दूसरा सेट दस पुत्र और किए वो कोई राजी नहीं हो रहे थे। क्यों राजी नहीं हो रहे थे? क्योंकि तब फीमेल थे नहीं। अब ब्रह्मा जी को तो पता नहीं था, ब्रह्मा जी तो मनुष्य सृष्टि करते थे। तो फिर पिताजी को बोले कि डैडी ये काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ, आप कुछ हो नहीं रहा है। तो भगवान फिर आए, बोले बेटा चिंता मत करो, ऐसा करना चाहिए, अभी सब कर रहा है। दूसरे जन्म में सबसे पहले आपको पंच पर्व अविद्या बनाओ, पहले सृष्टि की बताए फार्मूला, और बोले कि अभी जो मनुष्य सृष्टि करता है तो एक प्रकार का ना डिजाइन में थोड़े गलती है आपका, मैं थोड़ा सा मैप में करेक्शन करता हूँ, ऐसे करो तो फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब चलेगा। तो भगवान ने मैप में करेक्शन थोड़ा करेक्शन किए तो ब्रह्मा जी को एप्लीकेशन दिए, तो ब्रह्मा जी ने फिर ओ किए पिताजी समझाने के बाद में, तो एक फीमेल बॉडी हुआ। सब फर्स्ट फीमेल बॉडी का नाम है शतरूपा, ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयंभूर शतरूपा है। वो आ करके ब्रह्मा जी को बोलना नहीं पड़ा, वो प्रकट होते बोले पिताजी हम सृष्टि करना चाहते हैं, हमें जगह बताओ। ब्रह्मा जी बोले हो रही, मैं बोल बोल कर थक रहा था, कोई राजी नहीं हो रही थी, ये तो मैं कुछ बोला नहीं, आप ही राजी हो रहे। बोले डैडी धन्यवाद आपको, ये क्या काम कर रहा है। तो उन्होंने सृष्टि सर्जना किए, तो सबसे पहले पांच अविद्या के सृष्टि किए, जिनको पंच पर्वा अविद्या कहा जाता है। पांच अविद्या है, जो पांच अविद्या है मोह महामेह तामिश्र अंधतामिश्र ऐसे, तो उसको दूसरे भाषा में कहा जाता है, तो राग द्वेष अभिनिवेश, अहमता अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, यही पंच पर्व अविद्या कहा जाता है। उसकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले की, करने के बाद बहुत बुरी लगा उनको, वो बोले मैं सृष्टि क्रिएशन कर रहा था, ये गलती क्यों किया, ये तो सारे अविद्या है, गड़बड़ है। बहुत रिपेंट किए, बैठ गए, ऑफिस बंद कर दिए, बोले ये क्या किया। तो भगवान को प्रार्थना की, पिताजी को फिर बोले, बोले प्रभु पिताजी ये गड़बड़ हो गया, मैं शुरुआत किया कोई अच्छे काम शुरू से करना चाहिए, मैं गलत काम किया, ये हो गया मेरे से सृष्टि। पांच को पांच अविद्या हैं, अहमता अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, इसको सृष्टि कर डाला। अब मैं क्या करूँ, उसको चेंज करूँ ना क्या करूँ। तो उनके पिताजी नारायण आए, बोले बेटा चिंता मत करो, ये तो मैंने वही प्लान दिया था प्रेरणा देव करने के लिए, यही जरूरी था। बोले जरूरी था अज्ञान को बनाना ना। बोले बेटा अगर अज्ञान नहीं करता तो सृष्टि आपका दुकान चलेगा कैसे। बोले समझा नहीं। बोले अगर तू अज्ञान नहीं करता, सर ज्ञान को ही सृष्टि करता, जो ज्ञान प्राप्त करेंगे कोई घर में रहेंगे नहीं, सब जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेंगे। तो यहाँ तो आप इतने बड़े सृष्टि किया, तो सृष्टि में तो कोई रहेंगे जब, तो अज्ञान करेगा तब फंसेंगे ना, अज्ञान तो सब निकल जाएंगे, कोई रहेंगे नहीं इधर। तभी उदाहरण देते हैं, जैसे किसी ने आपने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, आपने करोड़ों की लागत ला करके बड़े डिग्निफाइड हाई इक्विप्ड हॉस्पिटल बनाया, तो हॉस्पिटल बना करके जब हो जाएगा ओपनिंग वगैरह सब होने के बाद में, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर ओनर वो हमेशा ही चाहता हूँ कि भर भर पेशेंट हमेशा भरे रहे, वही उनको कुछ रहेंगे ना, जब पेशेंट आएंगे नहीं तो उनको अच्छा लगेगा क्या, तो चाहेगा कि कुछ तो बीमारी पड़े है, तब तो हॉस्पिटल चलेगा। बोले ये संसार का हॉस्पिटल जैसा है, यहाँ बीमारी आएंगे नहीं तो चलेगा किसे, तो सबसे पहले बीमार ये रोग ये जो पंच पर्व अविद्या चाहिए तो इसमें लोग फंसेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो हम लोग आते हैं यहाँ, सबसे पहले अविद्या में फंसते हैं अहंकार। अहंकार क्या है? अहमता, कि मैं हूँ। एक्चुअली हमारा जो असली अहंकार है, जो सत्य अहंकार है, वो है हम भगवान के दास। हम कौन है? कृष्ण रे नित्य दास, जीव रे ही स्वरूप है। लेकिन उसको भूल जाते हैं, सबसे पहले उसको भूल जाते हैं अविद्या के कारण। आई एम समथिंग एल्स देन कृष्ण, मैं कुछ और हूँ। आप सभी को कोई पूछेंगे, आप अपना नाम गाम आईडी प्रूफ सब दिखाते हैं, मतलब अलग आईडी देते हैं। उसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार, ये सत्य नहीं है। सबसे पहले मिथ्या अहंकार, अपने आपको गलत परिचय देते हैं, ये अहमता। वो अस्मिता, जब स्वयं को गलती अपने आइडेंटिफाई किए तो फिर आप हुए तो अपना तो कुछ होना चाहिए ना। मैं मतलब मेरा भी तो कुछ होना चाहिए, जो मेरे कैटेगरी में आएंगे उसको अस्मिता, ये सब ये मेरा है, ये मेरे हैं, मेरे हैं। पहले मैं, फिर मेरे, दूसरा अविद्या मेरे में, उनके से जुड़ गए अहमता अस्मिता। जब आप कहें तब सबसे पहले किसियों को आप पसंद करेंगे, जब एक को पसंद करेंगे दूसरे को नापसंद करेंगे। जो पसंद किए एक चीज को, मैं आई लाइक दिस, दैट मीन्स ये आपका राग हुआ, और उसको नहीं लाइक कर दे मतलब द्वेष हुआ। राग करना ही द्वेष होगा। किसी चीज को पसंद किए, किसी को पसंद नहीं किए, वो आप और आपका होने के मतलब जरूर आप चुनेंगे। जिसको चुनेंगे उसके प्रति आप काटा चुन राग होगा, और जिसको त्यागेंगे उनके प्रति द्वेष होगा। और इन कर्म में आप अपना मना करके राग द्वेष में, इसमें इसी बुरी तरह से फंस जाना, उसको कहते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश इसमें मन इतने लग जाएगा, ये हमारा ही ये पराया है, ये हमारा ही पराया, राग द्वेष में बुरी तरह से फंस जाना को अभिनिविष्ट हो जाना। मन बुद्धि इसी में लग जाता है। यही पांच है अविद्या, जो हमारे इस भौतिक संसार में रहने का मूल है। ये अविद्या जब कट जाए तो इसी क्षण आपको ऊपर चले जाए, कोई आसक्ति रहेगा नहीं किसके साथ, सभी जानते हैं। लेकिन ये पांच इससे मजबूत है कि सब जानते, पश्यतपि न पश्यति, सब जानते समझते देखते पढ़ते सुनते भी फिर नहीं, क्योंकि इतने स्ट्रांग फॉर्मूला है। पांच बैठे हैं, वो सारे दिमाग को एक साइड करके रख लेते हैं, सारे दिमाग को साइड कर देते हैं। तो ये अविद्या को सबसे पहले भगवान ने सर्टिफाई किया, बिल्कुल नहीं तो दुनिया में को रहेंगे नहीं, चलेगा नहीं संसार। इसलिए अविद्या रूपी संसार किए थे। तो वो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि किए थे, सबसे पहले कपिल ब्रह्मा जी के दो भाग में, एक मेल एक फीमेल, मनु और शत्रुपा, उनने सृष्टि होकर के वो ब्रह्मा जी बोले कि बेटे अब प्रजात्पन्न करो, बोले हम करेंगे। आ करके सबसे पहले इस धरती लोग को चाहते थे धरती में सृष्टि करने के लिए, धरती लोग था नहीं, कौन ले गया था? हिरण्याक्ष ने चोरी किया था, बताओ। ऐसे ऐसे चोर भी हुआ करते हैं शास्त्र प्रमाण है, कोई चोर के भाई आपके घर से अलमीरा से सामान ले ले, घर को उठा ले, ऐसा कोई चोरी? ये कोई घर नहीं था, वो पूरा प्लानेट ही उठा ले, पूरा पृथ्वी चोरी किया। ऐसे भी चोर हुआ करते थे, पृथ्वी लोग को उठाकर लेकर गर्भ सागर में डाल कर रखा था। तो भगवान ब्रह्मा ने बोले पृथ्वी लोग ना कहाँ है, हम मिलता नहीं। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, परेशान हो गए, पृथ्वी मिस कर गया, रास्ता में है ना, अब जो 14 लोग है ना, 7th फ्लोर ही गए। अरे 14th फ्लोर बिल्डिंग है, आप 7th फ्लोर पे, आपको कमरा मिला था, आप कमरा है ही नहीं, बीच में खाली गैप, एक फ्लोर ही गैप है, ये कैसे है भाई? ब्रह्मा जी परेशान हो गए, बीच में एक फ्लोर ही नहीं, ऊपर में 6 फ्लोर, नीचे 7 फ्लोर है, बीच में एक फ्लोर है ही नहीं, अब क्या करें? जब परेशान होते डैडी की याद करते हैं, तो याद किए, तो याद कर रहे थे बैठ करके, मनु शत्रु अभी थे, बाकी मरीचि आदि कुला पुलस थे, उनके और भी पहले सेठ के पुत्र सब थे, सब खड़े थे। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित होकर के, फ्लोर कहाँ से गायब हो गया बीच में एक, तो भगवान ने तुरंत उनके एक छींक आया ब्रह्मा जी को, और छींक के नाक से एक छींक से छोटा सा लाल सा कुछ ऐसे निकलता है ना, उससे निकला, निकल करके उनके सामने बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, इतने विशाल यज्ञ ब्राह मूर्ति धारण की, इतने पर्वत जैसा हो, ब्रह्मा जी समझ गए ये हमारे डाड़ी तो जरूर है, यही से विचित्र हो दूसरे को ही नहीं सकते हैं, है ना। ओ भाई नाक से निकले, भाई कहीं से निकले, वही तो हैं। तो तुरंत अपने बेटों को बुलाए, आरती प्लेट लेकर आओ, फूल तुलसी से वाचमन पत्र लेकर आओ, पूजा करेंगे, पापा आ गए। तो सब मरीचे आदि सब मिल करके यज्ञ मरहा को पूजन स्तुति सब किए, और सब किए भगवान गर्जना करके तुरंत, तो जानते थे बेटा क्या चाहता है, वहीं पूरे विशाल रूप होकर के सागर में जंप किए, ताल तरंग सृष्टि करके गए। वो जा करके क्योंकि इतने पूरा पृथ्वी लोग ना बहुत हैवी वेट था, पूरा नीचे गर्भ सागर का नीचे सबसे नीचे वाला समुद्र का एक बार कीचड़ में फंस गया था, जैसे बहुत वजनदार सामान को डालेंगे और थोड़ी हो तो डूब करके बिल्कुल कीचड़ के अंदर चला गया था, कीचड़ के अंदर फंस गया था। कीचड़ में कितने हजारों हजारों साल के पुराना कीचड़ है इस समुद्र के अंदर, उसको कौन ढूंढेगा, कोई स्पेशल मशीन तो नहीं है उसे जाकर ढूंढे। लेकिन भगवान की सृष्टि बड़े विचित्र है, ऐसे ऐसे 84 लाख प्रकार के जीव से ऐसे जीव भगवान ने बनाए, एक शूकर रूप है उनका स्पेशलिटी है, वो कीचड़ के अंदर उनका घ्राण शक्ति इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है सूंघ करके पकड़ लगा कहाँ। आजकल तो बड़े बड़े क्राइम ब्रांच पुलिस लोग ने कुत्ते के घ्राण शक्ति के यूज करते हैं, लेकिन नहीं जानते कुत्ते की तो थर्ड क्लास है, सुपर क्लास स्वर का है, उनको ये पता नहीं। घ्राण का सबसे शक्तिशाली जो एजेंट है वो शुक्र है, सॉरी वो सुन करके इमीडिएट पता चला कितने दूर से। तो भगवान ने शुक्र रूप धारण किया क्योंकि पृथ्वी का जो लक्षण है वो क्या है, गंध, पृथ्वी गंध से जनाते, तो गंध को सुन करके शुक्र रूप पहचान कर लिए कि पृथ्वी कहाँ है, कीचड़ के अंदर जाकर, और उनको उठा करके लाए ब्रह्म रूप में, धरती को उठा कर ला करके अपने फ्लोर में सेट किए, फिर जहाँ बीच में उड़ गया था बीच में लाकर उसको ऑर्बिट में उसको रखे ला करके, तब रखे तो फिर मनु शत्रुपा ने वहाँ आए पृथ्वी में सबसे प्रथम दंपति मनु और शत्रुपा ने आकर के अब प्रजा उत्पन्न करने के लिए उन्होंने तपस्या किए थे, कठोर तपस्या की एक स्थल में, इस नैमिषारण्य में आकर के तपस्या किए मनु शत्रुपा ने। हजारों साल आप रामायण में पढ़े होंगे मानस में भगवान के इस कारण मनुष्य शत्रुपा का के बड़े सूखे पत्तल खा के क्या के और वर मांगे, भगवान जब आए कि आपके जैसा पुत्र चाहिए, और भगवान के जैसा तो कोई भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा तो हो ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए भगवान राम आए मनुष्य रूप में उनके वरदान पूरा करने के लिए। तो वो जो मनुष्य शत्रुपा के तपस्थली यही नैमिषारण्य है, वही तप किए थे, तो इसमें भगवान आकर उनको वरदान दिए थे, और भगवान सख्यात परम ब्रह्म परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके उनके पुत्र रूप में आए थे। तो ये जुग जुग में ये तपस्थली रहा और उसका महिमा तो अनेक अनेक यहाँ पर ऐसे वर्णन किया गया है कि पूरे जो राशि क्रोश क्षेत्र है उसमें पूरे ब्रह्मांड के जितने तीर्थ सारे तीर्थ इसमें हैं, सारे तीर्थ नैमिषारण्य में सारे तीर्थ को बुला के रखा गया। यहाँ पर एक परिक्रमा होता है हर साल, होली के 15 दिन पहले फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से दिन से पूर्णिमा पर्यंत, आप कभी इसी समय में यहाँ आएंगे ना देखेंगे लाखों लोग की भीड़ रहेगा, हर साल होता है वहाँ 84 परिक्रमा होता है, और इसी से चक्र कुंड से स्नान करके यहाँ जितने 84 क्रोश से पूरा एक महीने का 15 दिन का परिक्रमा लगता है, और उसमें लाखों लोग आते हैं 84 क्रोश का परिक्रमा, उसमें ब्रह्मांड के सकल तीर्थ का परिक्रमा हो जाता है। हाँ, ये विधि रखा गया अपना में, इसलिए आज भी इस क्षेत्र से हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं हर साल फाल्गुन शुक्ल के प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन पूर्णिमा होली पूर्णिमा तक यहाँ विशेष मेला होता है, होली पूर्णिमा के दिन छोड़ करके सब अपने घर में जाते हैं, नहीं तो 15 दिन पूरा हजारों लाखों लोगों की परिक्रमा चलता है आज भी। तो इस क्षेत्र का ये महिमा है, तो वहाँ पे हर जुग जुग में भगवान के निवास है, और विशेष करके हम लोग के लिए नैमिषारण्य का जो प्राधान्य है क्योंकि भागवत स्थली है, यहाँ पर भागवत के जो पब्लिकली रिसाइट किया गया जो भागवत में बताया गया, यहाँ के नैमिषारण्य में भागवत कहा जाता है, इसलिए हम हमारे कलयुग पावन अवतार इस चैतन्य महाप्रभु के लीला में, चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में रहे वहाँ भी बोले मैं जा रहा हूँ सारे तीर्थ रहेगा, तो वहाँ भी आप नवदीप परिक्रमा करेंगे कि नैमिषारण्य आता है, अब के कोई नवदीप परिक्रमा गए नैमिषारण्य गए, वहाँ नैमिषारण्य हुआ था, वहाँ भी ऋषि मुनि सब आ करके यहाँ भागवत कर रहे थे, वहाँ क्या कर रहे थे, गौर भागवत, गौर कथा, यहाँ गौर कथा करने लगे तो यहाँ ऐसे कि मदंती है, सप्त ऋषि और बड़े बड़े ऋषि सोनका जी जो जो उस समय में गौर आ करके वहाँ गौरांग महाप्रभु के भागवत गौर भागवत गौर कथा शुरू किए और शंकर जी को पता चला वहाँ क्लास हो रहा है, तो उनको पता चला तो वो इतने व्यस्त हो गए आने के लिए क्लास ना मिस कर जाए, और उनका गाड़ी तो थोड़ा स्लो बैल है ना, तो आया आकर ब्रह्मलोक बीच में आया, बोले ब्रह्मा जी इफ यू डोंट माइंड कैन वी एक्सचेंज आवर व्हीकल कार, तो उन्होंने बोले क्यों ना मेरा थोड़ा स्लो चलता है, तो उन्होंने अपना गाड़ी ब्रह्मा जी के पास रखी, ब्रह्मा जी की गाड़ी कौन सा था, हंस, हंस लेकर के स्वयं ड्राइव करके आ गए, तो लो ये हंस वाहन शिव अभी विद्यमान है, शंकर जी हंस वाहन है, बोले ब्रह्मा जी से ये हाई स्पीड कार मांग करके वो आ गए, आ करके पहुंचे इस क्षेत्र में जहाँ क्लास चल रहा था, वो जगह ही नहीं था बैठने के लिए, आप लोग तो फिर भी बैठ जाते, जगह ही नहीं था, जगह नहीं था, वो गाड़ी में बैठे बैठे सुने, गाड़ी से उतर नहीं पाए, बोले उतरूंगा क्या, जगह ही नहीं, इतने लोग भीड़ थे, इतने लोग भीड़ थे भगवान गौरांग महाप्रभु की कथा सुनने के लिए कि शंकर भगवान को अब बैठाने के लिए किसी, आप तो कोई आ गए हमें सीट देंगे ना उनको उठ करके, लेकिन उनको कोई सीट नहीं पूछे, इतने गौर कथा रस में इतने आसक्त थे, उनको कोई पूछे नहीं, भगवान शंकर गाड़ी में बैठे बैठे लास्ट तक सुने, तो इसलिए गाड़ी में बैठे ही रहे अभी तक बैठे हैं, इसलिए हंस वाहन कहा जाता है, हंस बैठे बैठे क्लास सुने उन्होंने, तो भगवान शंकर कथा राशि की इतने कथा सुनने में उनके इच्छा है वृत्ति है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की गाड़ी को बरो करके ला करके वहाँ कथा सुने थे, नमिषारण्य है नवदीप मंडल में भी, क्योंकि नमिषारण्य ही क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा प्रामाणिक भागवत चर्चा होता है, तभी तो है नमिषारण्य, नहीं तो क्यों नमिषारण्य करते, और भागवती कथा वहाँ कृष्ण लीला वहाँ गौर लीला, जो भी हो भागवत लीला का जो आस्वादन जहाँ एकाग्र चित्त से किया जाता है, जितने सारे सिलेक्टेड ह्यूमन बींग जिस क्षेत्र में बड़े ध्यान लगा कर एकाग्र होकर के कथा के आनंद लेते हैं, उस क्षेत्र का नाम है नमिषारण्य। तो आज इस क्षेत्र में आप आए हैं, हम लोग सो भागवती पंथा के अनुयायी हैं, हमारे शास्त्र भागवत है, हमारे प्रभु भागवत है, भागवत को शास्त्र में इसे कहा गया श्री कृष्ण परिवर्तित, श्री कृष्ण परिवर्तित होकर के दूसरा फॉर्म में आ गए, बुक फॉर्म में, बुक फॉर्म में आए, वही भागवत है, वो भागवत दूसरा नहीं है कोई, वो साक्षात कृष्ण है, भागवत साक्षात कृष्ण है, तो इसमें तो, और इसमें है क्या भागवत में विषय वस्तु, सनातन गोस्वामी पाद भागवत का श्लोक अर्थ करते हुए कहते हैं, भागवत में एक श्लोक आता है ना, इदं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्म समितं, तो उसके श्लोक को अर्थ करते हुए सनातन पाद कहते हैं कि ये भागवत नाम के पुराण जो ब्रह्म संहिता है उसको ऐसी, बोले ये नहीं है, बोले किसे ना, इदं भागवतम नाम पुराणम, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहिता, बोले इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहिता, नाम पुराण, बोले ये भागवत के केवल नाम ही वर्णन है, इसी पुराण का नाम क्या है, नाम पुराण, इसमें केवल नाम महिमा ही है और कुछ है ही नहीं, तो इसलिए भागवत का इतने महिमा है कि केवल उसमें नाम का ही महिमा वर्णन है, आद्य मध्य अंत भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय के 14 नंबर श्लोक में आप देखेंगे क्या श्लोक है, अपना संस्कृति घोरे जन्नाम विवसे गुणन तस्य सद्य विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम्, आपन्न संस्कृति घोरे यन्नाम विवसे गुणम, इसमें कहते हैं सुत गोस्वामी पहले अध्याय बताते, बोले अरे मैं क्या बताऊं, दूसरे आप पूछते हैं कलयुग लोग क्या करेंगे, ये आपन्न संस्कृति घोरे, इस घोर संसार चक्र में जो हम प्राणी फंसे हुए हैं नाना प्रकार के कार्य में, इस घोर संसार चक्र में फंसे संस्कृति घोरे यन्नाम, जिस भगवान का नाम को आप लेना नहीं चाहते थे, नाम जब करना नहीं चाहते, इच्छा भी नहीं है, लेकिन विवश होकर लेना पड़ा, विवश ही गणन, विवश में आप नाम उच्चारण के, विवश जानते हैं किसको कहते हैं, कौन समझा सकते विवश क्या है, मजबूरी में जबरदस्ती भी वो भी नहीं है, जबरदस्ती कोई आपको ऐसे भी कह सकते हैं मजबूरी है। नहीं आप वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग जब भी होगा उसका ये अर्थ है, जैसे कभी आप जाते हैं ड्राइविंग करते करते आप देखें कि हठात बिल्कुल बहुत बड़ा गड्ढा है, वो गाड़ी आपका स्पीड में है, ब्रेक मारने पर भी नहीं जाएगा, गड्ढा सामने दिख रहा है, अब तो गिरूंगा ही, मतलब ऐसे विपद से बच नहीं सकता, निश्चित मरने वाला हूँ, तब आप कितने महानास्तिक से नास्तिक राक्षस राक्षसाणी कुछ भी हो आपके मुख से तो एक बार हे प्रभु जरूर निकलेगा। इसी कहते हैं या नाम विवसे गुणा, ये बोलते विवस्ता, हम कभी नहीं लेना चाहते, कभी लिए भी नहीं, लेकिन यही से आसन्न विपद है, हाँ तो और कुछ नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन, तो इसीलिए हे प्रभु कहकर जो एक बार भगवान का नाम लिए तो तुरंत विपद दूरीभूत हो जाएगा, तुरंत चला जाएगा, एक नाम बोलते फिर श्रद्धा से नहीं विवस्ता से, श्रद्धा से नाम लेने के अलग बात है, जानो उसके टेस्ट करने के लिए नहीं, अत्यंत विवस्ता स्थिति में नाम ले लिया, एक नाम ग्रहण किया तो जब विभेति स्वयं भयं तस्य सद्य विमुचित, इमीडिएट विपद उसका चला जाएगा, क्योंकि भय ही जिसको भय करता है जिस भगवत नाम को, ये प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक में इसको बताया गया, और बीच में भागवत 12 स्कंद होता है, बीच होता है 6th कांड, बीच में तो नाम की महिमा ऐसे भारी भारी वर्णन के आ गया, जो अजामिल प्रसंग आदि क्या बताएं, वो तो साक्षात नाम महिमा है ना, नहीं संकृत्यं पारिहास्यं वास्तुभंग अवहेलन में वैकुंठ नाम ग्रहणम अशीष अघं हरंग विभु, ऐसे नाम की महिमा अजामिल प्रसंग में निश्चित किया गया, भगवान जमराज वैकुंठ दूत विष्णु दूत ने जमदूत ने बिल्कुल बाकायदा कोर्ट केस में प्रूव करके आर्गुमेंट करके डिसाइड कर दिए कि नाम का क्या प्रभाव है। आप लोग अजामिल प्रसंग सुने होंगे पढ़े होंगे, इस तरह का नाम है तो बीच में ही आद्य मध्य और अंत में भागवत के पूरा कहने के बाद में पूरे भागवत सुना दे, परीक्षित महाराज अपने काम बन गया था, बोले कि गुरुजी मैं तो प्राप्ति कर चुका हूँ, मतलब कि मुझे वो डर नहीं है, तक्षक चाहे आए चाहे नहीं आए, कोई सांप आए कैसे आके करे बॉडी को वो पूरा करेगा, मैं तो जा चुका हूँ, मैं शरीर में है ही नहीं है। परीक्षित महाराज बोल दिए, बोले गुरुजी आपकी कृपा से मैं जा चुका हूँ, शरीर से परे हो चुका हूँ, वो क्या करेगा। इसी स्थिति में परीक्षित महाराज बताया, बोले सुखदेव जी बोले, बोले परीक्षित अभी तक मैं इसीलिए आपको इसको कहा, जो इस केवल 6-7 दिन में आप जो परम पद प्राप्त कर गया सुन सुन करके, इसी का एक जो मुख्य पावरफुल उपाय है कि उनकी इस भगवान का नाम था, इसलिए पूरे भागवत के जो 335 अध्याय है अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक आप जो जानते हैं है ना, नहीं क्या है, नाम संकीर्तनंजस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणामे दुख समनम तं नमामि हरिं परम, ई नाम महिमा, तो आद्य मध्य अंत हमेशा नाम के महिमा गाया गया है, तो इसलिए सनातन गोस्वामी नहीं भागवत नाम पुराण है, भागवत पुराण नहीं है, ये नाम के पुराण है, इसमें केवल नाम की महिमा बताया गया, क्योंकि नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, नाम के अंदर सब कुछ है, सारे ज्ञान सारे सिद्धि सारे सब कुछ जो भी कुछ है एवरीथिंग इज इन विद इन नाम। एक बार शिव जी के दो बेटे हैं ना, कौन कौन है, तो दोनों के अंदर एक बार कंपटीशन छिट गया, क्या छिट गया, गणेश ही तो भाई अपने हिसाब से गणेश है, जब दोनों यंग हो चुके थे तो डैडी मम्मी विचार कर रहे थे बेटे को शादी का व्यवस्था करें, तो बोले मेरा शादी पहले करना, बोले मेरे शादी पहले करना, दोनों कंपटीशन के लड़ पड़े, अरे भाई करवाएंगे, नहीं 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 हमको पहले करा हमको पहले करा, तो फिर भगवान बोले कोई बात नहीं आपको हम एक कंडीशन देते हैं, जो इसे क्वालिफाई होगा उसको पहले शादी किया जाए, क्या है, बोले पूरे ब्रह्मांड को 7 बार परिक्रमा करके जो पहले आ जाएगा उसको पहले शादी किया जाए। अरे उसको सुन करके बड़े बेटा तो तैयार, बोला हमारे बड़े सुपरकार है, आप मरु है ना उसको उड़ कर जाएंगे फ्लाइट, फ्लाइट से करके आ जाए, बोले उनके पास चूहा है वो चलेगा कैसे, 1.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसका कैसे चलेगा, ब्रह्मांड परिक्रमा करेगा, हमारे घर का परिक्रमा नहीं कर सकता कुटिया का, वो क्या कर। तो तुरंत टेकअप लिए कार्तिकेय ने, अब गणेश जी भी सुने, बोले ब्रह्मांड परिक्रमा करना मेरे गाड़ी तो वैसे ही, क्या करूँ। तो लेकिन बुद्धिमान प्रचंड है, तो माता पिता दोनों बैठे थे, उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, माता पिताओं के चारों तरफ सात परिक्रमा कर ली, चुन 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 करके राउंड करके आके पार्किंग कर ली, गाड़ी खड़े हो गए। बोले अब गए नहीं, हम कर लिया ना, कर लिया मैं, केवल राम राम करके पूरा कर लिए। तो और उन्होंने वापस आए, बोले तो गया ही नहीं हो। बोले गया नहीं, पूछो पापा को, पूछो मैं पहले करके आया। जब पूछा गया, बोले हाँ किया। बोले तू तो इतने पसीना उतार कर करके आया, लेकिन इतने करके तू ही सही माना नहीं जाती, इनने रियली कंप्लीट किया, कहीं छोटा नहीं। बोले क्यों? बोले हम राम नाम में जप कर रहे थे, वो राम नाम लेते हुए हम दोनों को परिक्रमा कर लिया। बोले नाम की परिक्रमा जो कर लिया, वो ब्रह्मांड परिक्रमा कर लिया। तो नाम के अंदर ही सब कुछ ये प्रमाण करते। बोले ये नाम महिमा गणेश ही जानते हैं, इसलिए नाम को परिक्रमा करके ब्रह्मांड परिक्रमा कर डालते। और तो इस प्रकार हमेशा भागवत महापुराण का जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है? श्री नाम है, नाम ही महिमा है। तो इसी क्षेत्र में आकर के उसी भागवत को सुनना, समझना, धारण करना, उसी के असली अर्थ है श्री नाम को श्रद्धा और विश्वास के साथ लेना, पूर्ण विश्वास के साथ उसे ग्रहण करना और उसको जप करना, श्रवण करना, जो भी करना। बाकी ये तीर्थ स्नान, गोमती चक्र तीर्थ स्नान, ये वो सब तो है ही है, लेकिन इस क्षेत्र में आकर के अगर हम ठीक ठीक से नाम का ही आश्रय लेते हैं तो ही वास्तविक भागवत आश्रय होगा। इसलिए महाभागवत भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य, उन्होंने कहते हैं, नामाश्रय करी जतने तुम्हें थाकह आपना काजे। आप केवल संसार में अगर सुखी रहना चाहते हो तो केवल एक ही काम करो। बोले नाम बिना किछु नहीं के आर चौदह भुवन माझे। बोले चौदह ब्रह्मांड के बीच में दी मोस्ट प्रेसियस थिंग, सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान वस्तु केवल श्री नाम है। तो केवल श्री नाम को आश्रय करके जो रहेगा तो संसार व्याधि से, संसार बाधा से कभी परेशान हो नहीं सकता। उसी बात को श्री चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत यात्रा करे, तो पुरी से निकल करके गए, वो बड़ी लंबी कथा है। जब उन्होंने पहले कुर्म क्षेत्र पहुँचे, कुर्म ब्राह्मण जो गृहस्थ थे, तो महाप्रभु के नृत्य कीर्तन को देखकर इतने प्रभावित हुए, तो कीर्तन के बाद आ करके प्रार्थना की, बोले प्रभु मैंने तो पहली बार देखा कि ऐसी व्यक्ति नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, तो प्लीज कृपा करके आप सन्यासी हमारा घर में प्रसाद पाने के लिए चलिए, अपने घर में भोजन करिए। गृहस्थ लोग बुलाते हैं तो बुलाए अपने घर में। महाप्रभु राजी हुए, उनके घर में गए प्रसाद पाने के लिए। उनका घर में प्रसाद पाया, उन्होंने कितने श्रद्धा से कई आइटम बना करके स्वयं परिवेषण किया अपने पत्नी के साथ, स्वयं पंखा चल रहा था, बैठा कर खिलाया। महाप्रभु नहीं चाहते हुए बड़े श्रद्धा से खिलाया। खिलाने के बाद में महाप्रभु को पद सम्मान किया, थोड़ा रेस्ट तो कीजिए, तम्बुला दे दिया और पद सम्मान किया। और जब महाप्रभु बोले कि हो गया, फिर रेस्ट में जाऊँगा, तो रो रो करके बोला ब्राह्मण ने, चैतन्य चिंतामणि वर्णन आता है, बोला है कि संसार की यातना में सहन नहीं कर सकता हूँ, वो बहुत हो गया। प्रभु आप कृपा करो, प्रभु तुम्हार जाओ तुम्हार संगे, सही ते न पारी मुही संसार तरंगे। मैं कृपा करो प्रभु, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, वो मैं घर में रहना ही रहना चाहता, बहुत हो गया। तो प्रभुपाद जी ने इसको परपट में लिख रहे हैं कि जो ब्राह्मण था बहुत अच्छे धनाढ्य परिवार का था, उनके बेटे बहु सब थे, बहुत धन संपत्ति था, वो तो अच्छा था, अच्छा फैमिली था, लेकिन भगवान के सानिध्य प्राप्त किया, उनके सेवा सब, तो उनको कैसे छोड़ सकता। तो इसलिए सब फीका पड़ गया, बोला मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ प्रभु। प्रार्थना किया रो रो करके, कृपा करो प्रभु मुरे चाहे तुम्हार संगे, सही ते नमार मुई विषय तरंगे। ये विषय के तरंग मुझे बहुत बाधा, तो मैं सहन नहीं कर सकता, टू मच, अब मैं प्लीज आपके साथ जाना चाहता हूँ मुझे ले जी। तो भगवान ने उनको उत्तर क्या दिए, चैतन्य महाप्रभु पहले गृहस्थ ब्राह्मण जिसके घर में उन्होंने भिक्षा किए, उनको उत्तर देते हैं। और कबीरदास गोस्वामी कहते हैं कि एवरी डे महाप्रभु किसी न किसी के ब्राह्मण गृहस्थ घर में प्रसाद के लिए जाते हैं, उन सेम आंसर देते हैं, वो भी ब्राह्मण भी सेम बोलते हैं कि प्रभु मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, फिर विवाह हो गया अभी नहीं देना, ऐसे आग्रह प्रकाश करता है। उनको महाप्रभु सेम उत्तर देते हैं, वो जो उत्तर चैतन्य चिंतामण के मध्य में आप देखेंगे, महाप्रभु जो ब्राह्मण को गृहस्थ ब्राह्मण को सबसे प्रथम भोजन के हरम लेकर उत्तर दिए वही श्लोक है। महाप्रभु बोलते हैं कि नहीं ऐसा ना कहिवा, ऐसा मत कहो कि मेरे साथ जाने के लिए घर छोड़ के जाने के लिए, नो 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 नो, क्योंकि आजकल तो हम प्रचार करते हैं छोड़ के आ जाओ, क्योंकि हमारा आश्रम है आ जाओ ज्वाइन करो, तभी तो महाप्रभु का आश्रम तो था नहीं, किसको ज्वाइन करेंगे तो इसलिए वो नहीं बोले कि घर छोड़ कर आना जरूरत नहीं, ऐसा ना कहिवा घर छोड़ कर जाना, तो बोले क्या करूँ, तो महाप्रभु उनको दो सीरियस बात बताए, किसको याद है क्या बताए थे, अरे नहीं हाँ प्रभु जी बता रहे हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे अज्ञाए गुरु है या तारा ए देश, ये बात क्या बोली उसमें, ये बात तो सेकंड बात का, फर्स्ट पार्ट और कुछ कहे हाँ, नहीं 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 ना 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 ना, पहले घर में रह करके परिवार के साथ निरंतर कृष्ण नाम लो, ये पहला इंस्ट्रक्शन था, आप घर में रहो फैमिली के साथ रहो बट क्या करना है, कृष्ण नाम निरंतर लो, हमेशा कृष्ण नाम जप करो, और सेकंड जिनको देखेंगे उनको कृष्ण के उपदेश दो, कृष्ण नाम कराओ, कृष्ण उपदेश भगवत गीता, गीता के बारे में बताओ या नाम की महिमा बताओ, खुद करो दूसरे को कराओ, ये दोनों काम जब करोगे, महाप्रभु बात कहकर बोले, बोले अगर आप दो काम करोगे, स्वयं हमेशा नाम लोगे और दूसरे को नाम बताएंगे, तब मैंने आपको ये वरदान देता हूँ, दो काम जब आप घर में रहकर करोगे नहीं, तुम्हारा विषय तरंग बाधित नहीं करेगा, कबू ना बाधिवे तुम्हारा विषय तरंग, आप जो संसार के ज्वाला विभिन्न प्रकार टेंशन हाई टेंशन रहते हैं, बोले टेंशन होगा ही नहीं, ये दो काम कोई गृहस्थ रूप से करे, गृहस्थ के लिए सबसे प्रथम उपदेश महाप्रभु का ही, पूरे टूर में प्रत्येक गृहस्थ को ही उपदेश दिए महाप्रभु डायरेक्ट, बोले हमेशा कृष्ण नाम लो अनफ्रीज करो, बोले दोनों काम अगर करेंगे तो क्या होगा, संसार के जो बाधा आपको नहीं लगेगा, कभी ना बाधि व तुम्हार विषय तरंग, आपको विषय का संसार का जो बाधा आपको बाधित नहीं करेगा, आपका चैंटिंग गड़बड़ नहीं, बोल रहे क्या करूं हो नहीं रहा, बोले ये प्रश्न ही नहीं हो, कंप्लीट नहीं हो सकता, इसे करो तो, और बोला लेकिन वो तो होगा लेकिन मैं आपके संग जाना चाहता हूं, तो महाप्रभु बोले अगर आप ऐसे करोगे, एक तो विषय का बाधित अब नहीं करेगा, दूसरा मैं स्वयं आपके घर में आ जाऊंगा, आपके घर में आपको दर्शन दूंगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं आपके घर में आऊंगा, ये दोनों वरदान महाप्रभु ने दिए थे। तो इसलिए हम लोग का भी यही होना चाहिए, भगवान से कलयुग को पावन अवतारी वो जो वरदान दिए कि हम किसी व्यवस्था में रहे, दिल्ली में रहे, पंजाब राज में रहे, कहीं रहे, गृहस्थ में रहे, किसी भी आश्रम में किसी परिवार में रहे, अगर हमेशा भगवत नाम ग्रहण करें, जितना मणि और जप करना है जप करो, बाकी समय खाली टाइम में तो मन में ले सकते हैं, माला से लेना कोई जरूरत नहीं, निरंतर का मतलब है कोई काम करते हैं बैठते सोते उठते मन में लीजिए, भल्यू में देकर लीजिए, लो भल्यू में लीजिए, नील भल्यू में लीजिए, कैसे भी लेते रहिए, इसको कहता है निरंतर हमेशा लेते रहिए नाम, जो आपको संख्या माला है वो तो सुबह शाम जो पूरा करेंगे, सोलमान पूरा करने के बाद बिटवा को पार्किंग में रख लीजिए, रखकर बाकी समय तो आप ऐसे ही ले सकते हैं, नन ऑफिशियल है ना, नहीं ये ऑफिशियल इतना करके बाकी अनऑफिशियल में ले सकते हैं, तो हमेशा इस प्रकार नाम लो, और जितने आपके वो फ्रेंड सर्कल है उनको प्रीचिंग भी करो, ये दो भगवान ने चाहते हैं हमसे, ये दो काम कोई भी करे, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, कोई भी करे तो भगवान वरदान दिए, दो काम जो करेगा उनको संसार के ज्वाला बाधित नहीं करेगा, विषय तरंग बाधित नहीं करेगा, और भगवान स्वयं अपने घर में आएंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं अपने घर में आ जाऊंगा, वो गृहस्थ के लिए सबसे बड़े वरदान है, आपके घर ही मंदिर हो भगवान स्वयं आ जाएंगे आपके पास, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु वरदान प्रत्येक गृहस्थ को दिए, तो आप सभी गृहस्थों का ये मुख्य धर्म यही होना चाहिए, और ये सबसे पवित्र सबसे पावन सबसे शक्तिशाली तीर्थ नमिषा तीर्थ प्रत्येक जीव का तीर्थ है, इस तीर्थ में आप आज के अंतिम पड़ाव में आप ये अगर सत्य संकल्प लेंगे कि कम से कम इस संसार से बचने के लिए हमारा यही एक ही उपाय है, भगवत नाम के शरण में रहेंगे, आश्रय लेंगे और जथा निरंतर जितने भी हो सके आप नाम स्वयं करेंगे और दूसरे को उपदेश देंगे, तो हमारा फिर कोई दिक्कत नहीं होगा और भगवान हमको स्वयं अपने पास आएंगे। तो ये हमारे वास्तविक जीवन की सफलता होगा, जीवन का लक्ष्य होगा। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में आप लोग तो शायद दधीचि मुनि का संत सर्कल नहीं जाएंगे, लेकिन दधीचि मुनि का जो मैं ऑलरेडी पंजाबी में बोल चुका था, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो किस प्रकार सारे देवताओं ने आए थे और परोपकार के लिए उन्होंने अपने शरीर डोनेट कर दिया था, और दूसरे को डोनेट करना दूर बात है, अपने शरीर ही दे दिया दूसरे के हित के लिए, ये ऐसे क्षेत्र है। और यहाँ पे केवल दधीचि मुनि नहीं, कितने कितने ऋषि मुनियों का तीर्थ, क्योंकि इसी में आकर सब अपना अपना प्रोजेक्ट पूरा करते थे, सफलता होती थी, यज्ञ दान तप कर्म दान रखना सब यही किए थे। और भगवती माँ सीता का स्थान है, इसलिए सीतापुर भी इसमें बताया, तो इसलिए बड़े स्थल है ये, इस स्थल को आप आए हैं और हर समय में उसका महा ग्लोरीज है, महिमा है, महत्व है। तो कल आप स्थान दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, तो कल फिर श्रवण का चांस है कि नहीं पता नहीं, तब लोग डिसाइड करेंगे। टाइमिंग ओके ओके। हमने आपके पूरी यात्रा में हमेशा आपको बोर करता रहा, दो दो घंटा, ढाई ढाई घंटा, आप लोग कहीं जा नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे, तो इसलिए हमको क्षमा कर देना, क्या करें, हमको लाए इसलिए आप लोग को दिक्कत करने की।